इसके साथ साथ ही आज हम आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय पर डायलॉग सेशन शुरू कर रहे हैं। आज के इस विषय पर हमारे महानुभाव अपने विचार रखने वाले हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के चेयरपर्सन आदरणीय भ्राता जी डॉक्टर डीजे पति जी, आप आए मंच पर और अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही साथ कीनोट स्पीच देने के लिए हमारे ब्रदर डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, आपसे भी निवेदन है आप भी आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और साथ साथ हम करतर ध्वनि से इनका अभिवादन करते रहेंगे। तालियां बजाने के आपके भी दो फायदे, आसपास वाले जो भी सो रहे होंगे वो भी जाग जाएंगे, इसलिए तालियां सभी जोर से बजाएंगे। साथ ही साथ हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर ब्रदर वाईबाब जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है आप भी आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। प्रोफेसर नरेंद्र कौशिक जी, सिस्टर अनोना अग्रवाल जी, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी, भ्राता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी, ब्रदर ओमवीर सिंह जी, आए अपना स्थान ग्रहण करें। ब्रदर मनोहर मनोज जी, भ्राता जयपाल पाटिल जी, आदरणीय सुनीता दीदी जी, आप आए मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी तालियां बजाते रहे। भ्राता करमचंद भाई जी, आप भी आए अपना मंच पर स्थान ग्रहण करें। पुनः सभी एक बार तालियों की करतर ध्वनि बजाएंगे। जो भी खड़े हैं हमारे प्यारे बंधु, मीडिया पत्रकार बंधु, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। जो भी साइड में बैठे प्लीज आगे आ जाए, बीच में आ जाए, काफी जगह खाली है यहाँ पर, ये जगह को भरे। आइए अपने आप को रिचार्ज करने के लिए फिर से चलते हैं, अपनी मन की डोर उस परमात्मा प्रभु से मिलाए और इस सुंदर से सत्र में प्रभु का आवाहन करें। हम 3 मिनट परमात्मा को याद करके इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ परमात्मा का आवाहन करने के साथ साथ आप सभी का भी स्वागत है और हमारे मंचस्थ महानुभवों का भी स्वागत है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करूंगी, हमारे सभी मेहमानों का पुष्प का कुछ अंगवस्त्र और बैच पहनाकर स्वागत करेंगे। हम सभी करतर ध्वनियों से स्वागत करेंगे। ये स्वागत इनका ही नहीं, आपका भी है। ऐसा ही आप अनुभव करें और तालियां बजाते रहे, तालियों का सहयोग देते रहे। हम भी तालियों का सहयोग देते रहेंगे। कितना सुंदर ये मनोरम दृश्य है, परमात्मा के घर में हमारे ही परमात्मा के बच्चों का इतना सुंदर अंगवस्त्र, बैच और पुष्पों के गुच्छों से स्वागत किया जा रहा है। देख रहे सभी आप पुष्पों के गुच्छों में ये अलग रंग बिरंगी फूल खिले हुए, क्या हमारे चेहरे ऐसे नहीं खिल सकते हैं? सभी एक बार प्रेम से मुस्कुराए, अपने ही स्थान पर बैठे हुए प्रेम से इन फूलों की तरह मुस्कुराए और समझे परमात्मा ने हमें मुस्कुराने का वरदान दिया हुआ है। स्वागत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आमंत्रित करूंगी हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग के पंजाब से करमचंद भाई जी। आपने अपने जीवन के 40 दशकों से भी ज्यादा समर्पित जीवन इस ईश्वरीय सेवाओं में दिया हुआ है। आपका जीवन हम सबके लिए प्रेरणा है, आदर्श है। आपसे निवेदन है, आप शब्दों से स्वागत करेंगे। भाई जी का भी तालियों से हम अभिवादन करेंगे।
ओम शांति। सभी मिलकर के बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। सम्माननीय मंच पर विराजमान सभी गणमान्य अतिथि तथा देश विदेश के कोने कोने से मीडिया महासम्मेलन के डायलॉग सेशन में पधारे मीडिया मनीषियों, भाइयों और बहनों, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि आप सब ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने का फैसला किया है। आज के इस सत्र का विषय एथिकल एआई एंड सोशल मीडिया फॉर एन आइडियल फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म। इस सत्र के अध्यक्ष महोदय आदरणीय डॉक्टर डी जे पाती जी, डीन एंड डायरेक्टर इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट जो नोएडा से पधारे हैं, मैं उनका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। इस सत्र के मुख्य वक्ता डॉक्टर कुंजन आचार्य जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर का भी मैं अभिवादन करता हूं। माननीय अतिथि के रूप में हैदराबाद से PR वॉयस के एडिटर ब्रदर वाई बाबजी और जयपुर स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के डीन प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी और जयपुर ऑल इंडिया रेडियो के संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मुंबई से पॉडकास्टर बहन अनोना अग्रवाल जी और ग्वालियर से ITM यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ब्रदर ओमवीर सिंह जी, गाजियाबाद से सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑथर ब्रदर मनोहर मनोज जी और रायगढ़ से भारतीय पत्रकार संघ के वाइस प्रेसिडेंट ब्रदर जयपाल पाटिल जी का भी मैं इस सत्र में अभिवादन करता हूं। इस सत्र में हम सभी को मेडिटेशन की गहन अनुभूति कराने वाली दिल्ली से मीडिया विंग की जोनल कोऑर्डिनेटर बहन ब्रह्मा कुमारी सुनीता जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, तथा इस सेशन की कोऑर्डिनेटर अजमेर से सब जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग ब्रह्मा कुमारी योगनी बहन जी का भी मैं वेलकम करता हूं। इस डायलॉग का विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो न केवल पत्रकारिता से बल्कि सारी मानवता के भविष्य से जुड़ा हुआ है। ये विषय एक चुनौती भी है, अवसर भी है और जिम्मेदारी भी है। पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया ने पत्रकारिता के परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है। खबरों को एकत्र करने से लेकर विश्लेषण करने और दर्शकों तक पहुंचाने तक हर कदम पर तकनीक ने हमारी सहायता की है, परंतु इस सुविधा के साथ साथ कई सवाल भी खड़े हुए हैं। क्या हम इस तकनीक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या खबरों की विश्वसनीयता खतरे में है? क्या फेक न्यूज, डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगंडा जैसी चुनौतियां हमारे मूल्यों को कहीं कमजोर तो नहीं कर रही हैं? ब्रह्मा कुमारी ने हमेशा आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिकता पर जोर दिया है। इस संस्था का मानना है कि बाहरी दुनिया में बदलाव लाने से पहले हमें अपने भीतर बदलाव लाना होगा। पत्रकारिता में भी यही सिद्धांत लागू होता है। हमें खबरों को सिर्फ रिपोर्ट नहीं करना, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनना है। आज जब AI हमारे सामने एक शक्तिशाली उपकरण बनकर के खड़ा है, तो हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए हो। AI हमें खबरों का विश्लेषण करने, पैटर्न खोजने और जटिल डेटा को समझने में मदद तो कर सकता है, लेकिन ये कभी भी पत्रकार की विवेकशीलता, संवेदनशीलता और नैतिक जिम्मेदारी की जगह नहीं ले सकता। इसी तरह सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को एक पत्रकार ही बना दिया है। ये एक अद्भुत शक्ति है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। हमें यह सीखना होगा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल समाज को विभाजित करने की बजाय जोड़ने के लिए कैसे करें। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी आवाज नफरत फैलाने की बजाय सद्भाव और समझदारी को बढ़ावा दे। इस सम्मेलन का उद्देश्य सिर्फ इन चुनौतियों पर चर्चा करना तो नहीं है, बल्कि समाधान खोजना भी है। मैं आशा करता हूं कि यहां होने वाली चर्चाओं से हम सभी को यह समझने में मदद मिलेगी कि हम कैसे नैतिकता और तकनीक को साथ लेकर के चल सकते हैं, हम कैसे एक ऐसा पत्रकारिता का भविष्य बना सकते हैं जहां सत्य, करुणा और जिम्मेदारी सबसे ऊपर हो। फेक न्यूज और डिसइंफॉर्मेशन को बार बार चैनल्स पर आने से स्वस्थ व्यक्ति की मानसिकता भी रोगीली बन गई है। यदि इन पर अंकुश ना लगाया गया तो भ्रम, भय, चिंता, अवसाद और धोखाधड़ी बढ़ेगी, इसलिए नियमावली आवश्यक है। लेटेस्ट सर्वे में जहां तक मुझे पता है भारत में 82 करोड़ से भी ज्यादा लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, जिनमें से 47 करोड़ सक्रिय सोशल मीडिया यूजर्स हैं। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूजर्स आप सब जानते हैं 18 से 24 वर्ष के युवा हैं और 36% भारतीय किशोर रोजमर्रा जिंदगी में सोशल मीडिया कंटेंट से पैदा तनाव व चिंता महसूस करते हैं। एक बार फिर मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। ये मीडिया मनीषी बहुत एक्सपर्ट हैं, माहिर हैं। मुझे विश्वास है कि यहां होने वाली चर्चाएं हमें एक नई दिशा देंगी और पत्रकारिता को उसके सही मार्ग पर वापस लाने में मदद करेंगी। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भ्राता करमचंद जी का। बात तो देखा जाए बड़ी सत्य है, आज के समय में, आज के समाज में मीडिया की भूमिका समाज को नवनिर्माण करने की है। लेकिन देखा गया है आजकल जो डिजिटल सोशल मीडिया आ गया है, एआई जो आ गया है, उसके कारण से आज के यूथ या आज की जनरेशन कहो या आज का मनुष्य कहो, किस ओर जा रहा है, हम सभी उसके उदाहरण देख चुके हैं, देख रहे हैं, देश में, विदेश में किस तरह से परिस्थितियां एक मैसेज, गलत मैसेज के क्लिक से किस तरह से सारी सुख शांति संसार की नष्ट हो रही है, किस तरह से सारी परिस्थितियां शांति से अशांति में बदल रही है। आप सब ने सुबह मेडिटेशन सत्र में एक चीज अच्छे से समझी होगी कि जो भी प्रोडक्शन हमारी तरफ से होता है उसका मूल रूप होता है जैसी हमारी स्थिति है वैसा हम उसकी क्रिएशन करते हैं। आज के विषय पर हम चर्चा तो अवश्य करेंगे, लेकिन सोचने वाली बात है क्या उस स्थितियों को, उन बातों को हम सही मायने में बदल सकते हैं। उसको बदलने के लिए हमारे अंदर अपनी स्थिति को, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि को और अपने नजरिए को बदलने की आवश्यकता है। क्या हम उन सबके लिए तैयार है? तैयार है, जो तैयार है वो हाथ खड़ा करेंगे। इन सभी चैलेंजेस से, जैसे सोशल मीडिया पर आजकल फेक न्यूज भी आ रही है, आजकल ट्रोलिंग का सिस्टम भी आ रहा है, किसी की कोई बात अगर अपनी शेयर कर रहे, कोई भावना शेयर कर रहे तो कितना उसको ट्रोल किया जाता है, कितना उसके बारे में गलत गलत कमेंट्स आते जाते हैं, कितना उन चीजों के लिए, उन बातों को कितनी हिंसात्मक तरीके से देखा गया है। साथ ही साथ फ्रॉड आजकल हो रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द हमने शायद आज से 5 से 6 साल पहले तो कभी सुने नहीं थे। जब सुन रहे हैं तो सबको बड़ा इंटरेस्ट आता है, ये सब कुछ क्या है। एआई ने जितनी सुविधा दी है लेकिन सुविधाओं को हम कम यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हम किसको फेस कर रहे हैं, उसके चैलेंजेस को, उसके नुकसान को। तो क्या इन सभी चीजों से बचा जा सकता है? तो इन सभी बातों के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए, अपने विचार रखने के लिए मैं आगे आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को, जो कि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर से। आपका स्वागत है, आपसे निवेदन है इन सभी बातों पर आप अपने विचार रखें।
ओम शांति। आमतौर पर भोजन के बाद के सत्र थोड़े मुश्किल होते हैं और थोड़े विलंब से भी शुरू होते हैं, लेकिन इस गरिष्ठ सत्र में हम कई वरिष्ठ लोगों का सानिध्य प्राप्त करेंगे। मंच पर विराजित विद्वज्जनों और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष, आज तक मीडिया इंस्टीट्यूट के निदेशक मेरे बड़े भाई ध्रुव ज्योति पति जी को मैं प्रणाम करता हूं। सदन में मौजूद देशभर से आए मीडिया कर्मियों का भी अभिनंदन करता हूं। ये ब्रह्म कुमारी परिसर में आने का मेरा करीब 15वां अवसर है और मैं आमतौर पर यह देखता हूं कि स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूट जो होती हैं, जो आध्यात्मिक संस्थाएं होती हैं, उनमें मीडिया के ऐसे आयोजन बहुत कम मिलते हैं। मैं इसके लिए ब्रह्म कुमारी परिवार का अभिनंदन करता हूं, साधुवाद करता हूं कि वे देश में विदेश में मौजूद वे तमाम आध्यात्मिक पत्रकार या आध्यात्मिक मीडियाकर्मी किसी भी रूप में पत्रकारिता से जुड़े लोगों को यहां बुलाकर आध्यात्मिक चर्चाएं होती हैं, ये बहुत सुखद और अभिनंदन का विषय है। आज विषय बहुत महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या और संभावनाओं को लेकर तय किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसकी हम लोग चर्चा पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं, दिनों का अर्थ कुछ ऐसे समय से जब से इंटरनेट की प्रगति हुई है, इंटरनेट पे बहुत अद्भुत किस्म का जो तकनीकी परिवर्तन हुआ है, उसके बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सब लोगों के बीच में घर कर गया है। पत्रकारिता का पुराना दौर जब याद करते हैं, जो पुराने लोग पत्रकारिता के हैं जानते हैं, हम किस तरह से ट्रेडल पर एक एक शब्द चुनकर लिखा करते थे, उनके फर्मे बनाया करते थे, फोटो के फ्रेम बनाया करते थे। लेकिन पुराने दौर से जब नए दौर में आते हैं तो चीजें बदल जाती है। आज टाइप करने की जरूरत नहीं है, टेक्स्ट टू स्पीच एंड स्पीच टू टेक्स्ट का जमाना आ गया है। आप कुछ भी कहिए और वो टेक्स्ट में रूपांतरित हो जाएगा। एक दौर ऐसा भी था जब रिपोर्टर्स बैठे हुए रिपोर्टिंग करके खबरों को लिखा करते थे। अभी आज का तकनीकी दौर AI का है, मैं बोल रहा हूं और आपके स्क्रीन पे इसको टाइप हुए देख सकते हैं आप। ये तकनीकी प्रगति का दौर है। मुद्रण की बात जहां तक टाइप की होती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कुछ बदलाव आए हैं या बदलाव आ रहे हैं, वे इसी का सूचक है कि अब छोटी छोटी बाइट्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने टेलीविजन का एक लंबा दौर देखा है, जब किसी बड़े अधिकारी की, मंत्री की बाइट नहीं मिलती थी तो खबर को एस्टेब्लिश करने में मुश्किल होती थी और टेलीविजन में ड्राई खबर चलाने का चलन नहीं होता था। ऐसे में बहुत मुश्किल होती थी किसी की बाइट जुटाना, लेकिन आज के दौर में बाइट जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक स्क्रिप्ट रखिए और रखिए कि यह कुंजन आचार्य का फोटो है, हमें इसकी बाइट चाहिए, वो आपको एक बाइट रूपांतरित करके मेरी आवाज में आपको दे देगा। कितनी अद्भुत प्रगति है, और आप लोग उसको तय भी नहीं कर पाएंगे कि ये ओरिजिनल बाइट है या AI जनरेटेड बाइट है। हम ऐसे तकनीकी परिवर्तन के दौर में जी रहे हैं जहां हमारे आंखों, नाक, कान, हाथों को ये विश्वास नहीं होता है कि ये तकनीक से बना है या ओरिजिनल है। अब जब AI की बात होती है तो ChatGPT की बात भी होती है, Gemini की बात भी होती है, माइक्रोसॉफ्ट Copilot की बात भी होती है, सबसे महत्वपूर्ण X ग्रोक की बात भी होगी। कितने लोग ये ग्रोक का इस्तेमाल करते हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। संख्या कम है, बहुत बढ़िया। देखिए, इसलिए मैंने जिक्र किया है क्योंकि तेजी से बदलते AI के दौर में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो हमारी हर चीज को पलक झपकते ठीक करने और उसे महत्वपूर्ण तरीके से प्रदर्शित करने के लिए हाजिर हैं। चाइना का डीपसेक और मेटा का लिमा 3 आपके व्हाट्सएप के सबसे नीचे एक नीला गोला बना हुआ है लिमा 3 का, जिसका इस्तेमाल कम लोग करते हैं। कई लोग पूछते भी हैं, भाई साहब ये नीचे क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए है, हमारे मस्तिष्क की जो क्षमता है उस क्षमता का 15-20% हम पूरे जीवन काल में इस्तेमाल कर पाते हैं। वैसा ही तकनीक की जो चीजें हैं, मुझे लगता है कि बड़े बड़े मोबाइल, बड़े बड़े इक्विपमेंट हमारे पास होने के बावजूद हम उसका इस्तेमाल पूरा नहीं जानते हैं, नहीं कर पाते हैं। तकनीक के साथ चलना आज के दौर की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। एक ही बात होती है, आमतौर पर हम सोचते हैं होता क्या है, क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कोई ऐसी बुद्धिमत्ता का दौर है जिसमें कोई नई चीज चिप लगा दी गई है, या बुद्धिमत्ता का रूपांतरण किसी और रूप में कर दिया गया है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मशीन सिर्फ मशीन है, वो सोचती नहीं है, वो कभी भी ये नहीं बताएगी आपको कि उसने सृजन क्या किया है, वो सिर्फ आपका पैटर्न फॉलो करती है। AI क्या है आप समझिएगा, अगर आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद हाथ धोते हैं, हाथ धोने के बाद सौंफ खाते हैं, ये आपका रोज का एक पैटर्न है, चाहे लंच करें चाहे डिनर करें। मशीन ऐसा ही करती है, उसने अगर भोजन की कार्य प्रणाली को फॉलो किया है तो उसे पता है आदमी भोजन करने के बाद हाथ धोएगा। AI उसे टूल्स को फॉलो करता है, उसे पैटर्न को फॉलो करता है। तमाम तरह की दुनिया भर के जितने पैटर्न इंटरनेट के महासमुद्र में सेव है, वो सारे पैटर्न सर्च करके, रिसर्च करके आपके सवालों का जवाब देता है। अगर आप पूछते हैं कि ग्रोक मुझे एक प्रेम कविता लिखनी है और मुझे एक प्रेम कविता अपने मित्र को देनी है, तो क्या मुझे लिख सकते हैं बरसात हो रही है और एक प्रेम कविता लिखनी है? वो 2 मिनट में आपको, 2 मिनट तो ज्यादा है, वो 30 सेकंड में आपको एक प्रेम कविता लिख के देगा, क्योंकि उसे पता है प्रेम कविता के पैटर्न क्या है, वो एक नई चीज क्रिएट कर देगा। ये डाटा पैटर्न कहलाता है, जिसे रुझान भी कहा जाता है। अभी क्या रुझान चल रहे हैं, उस रुझान को फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन AI गलतियां भी करता है। अगर आप उसे पूछें, आप बताइए कि भारत की राजधानी के भीतर ऐसी कोई जगह है जहां पर सबसे सस्ता पराठा कहां मिलता है, वो आपको बताएगा। और आप अगर उसको गलत साबित करें कि नहीं आपने गलत सूचना दी है, मेरी सूचना में ये जगह बहुत सही है, वो तत्काल क्षमा भी मांग लेगा। वो कहेगा ठीक है, मैं इसको स्वीकार करता हूं और मैं अपने डाटा को अपडेट भी कर देता हूं। वो सीखता भी है, वो आपकी बात से ही सीख रहा है, गलतियां भी करता है और सीखता भी है। इंटरनेट पर जब जब क्रांति हुई, तब तब AI और मजबूत होता चला गया। 5G का जमाना जब आया, अब तो हम और आगे बढ़ने वाले हैं अलग जनरेशन में। ये एक असिस्टेंस है, आप देखेंगे तकनीकी तौर पर AI को असिस्टेंस सबका इस्तेमाल किया जाता है। 1 दशक पहले हमारे घरों में एलेक्सा आई थी, हम कहते थे एलेक्सा प्ले म्यूजिक, एलेक्सा म्यूजिक प्ले करती थी। लेकिन आपके हर मोबाइल में अभी एक एलेक्सा अलग अलग नामों से मौजूद है, जैसे मेरे फोन में सीरी है, आपके फोन में अलग अलग नाम से होगी। अगर मैं कहूं सीरी ये फोन लगा के दीजिए, वो फोन लगा के देगी। लेकिन अगर आप सीरी से कोई सवाल पूछेंगे, सीरी आज मेरा मन थोड़ा उद्विग्न है, मैं क्या करूं, वो आपको सुझाव भी देगी। उसे पता है मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूं या मेरा मूड क्यों ऑफ है। लेकिन ये जो AI फॉलो करता है, ये एल्गोरिदम को फॉलो करता है। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, मशीन को सब पता है कि पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या सोचा, क्या क्या किया, आपने क्या क्या सर्च किया। उसी एल्गोरिदम को फॉलो करते हुए AI अपनी बात को आगे बढ़ाता है। ब्रह्मा कुमारी के परिसर में हूं मैं मानता हूं मशीन का एल्गोरिदम तो हम पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। क्या आपने कभी अपने मन के एल्गोरिदम को खोजने और देखने की कोशिश की है? हमारा मन क्या चाहता है? कभी कभी हम बहुत दुखी, पीड़ित, परेशान सी बातें करते हैं तो वैसी स्थितियां हमारे सामने आना शुरू हो जाती है। लेकिन हम प्रसन्न होते हैं, खुशी की बातें करते हैं, तो खुशी वाली बातें आना भी हमारे पास शुरू हो जाती है। ये मन का एल्गोरिदम है जो ब्रह्मा कुमारी के राजयोग में सिखाया जाता है, मेडिटेशन में सिखाया जाता है, भक्ति में सिखाया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस AI के साथ में मन के एल्गोरिदम को फॉलो करने की भी बहुत जरूरत है। AI के जमाने में मैंने अभी पुरानी पत्रकारिता की बात की, लेकिन भविष्य की पत्रकारिता कैसी होगी, क्या आपने कभी कल्पना की है? क्या ये कलम कागज सब छूट नहीं जाने वाले हैं? क्या हम AI के दौर में ये पहचान करना मुश्किल हो जाएगा असली एंकर कौन सा है और मशीन वाला एंकर कौन सा है? वो दौर भी आ ही गया है। अगर प्रिंट मीडिया में हम लोग काम कर रहे हैं तो मैंने जैसा कहा कि आपको वॉइस टाइपिंग की सुविधा मिलती है, लेकिन इससे ज्यादा भी आपको खबर की हेडिंग लगा के देगा, वो खबर को एडिट करके देगा। मैं आपको एक बात जिक्र करता हूं, कई लोग ऐसे होते हैं जो परेशान होते हैं खबर लिखने के लिए, अरे भाई कार्यक्रम खत्म हो गया, खबर लिखना है। आप एक बात तय कीजिए, अगर आपको लगता है कि आज की इस कार्यक्रम के समारोह में 10 वक्ता हैं, आप 10 वक्ता के नाम सीधे से दर्ज कीजिए, इसके विषय को दर्ज कीजिए कि आज का डायलॉग सेशन किस नाम से हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां कर रहा है, सिर्फ ये लिखिए और नीचे सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए, मुझे एक खबर विस्तार से बनाकर दीजिए। वो ब्रह्म कुमार इसका डाटा को इकट्ठा करेगा, पैटर्न को देखेगा, अब तक क्या कार्यक्रम हुए हैं, यहाँ मीडिया सम्मेलन कौन कौन हुए हैं, कुंजन आचार्य ने कितने भाषण दिए हैं, दिव्य ज्योति पति जी ने कितने भाषण दिए हैं। वो भाषण बताने की जरूरत भी नहीं, वो सारे भाषण का एक डाटा कलेक्ट करेगा और आपको एक बड़ी 5 कॉलम की खबर बना के दे देगा 30 सेकंड में। समय बीत गया जब पत्रकार बाहर बैठ के खबर लिखा करते थे, घंटों खबर लिखकर सबमिट करने की प्रतीक्षा किया करते थे। अब ये एक दौर है जब पत्रकार के हाथों से खबर भी छीनी जा रही है। मुझे लगता है आने वाला दौर पत्रकारों के लिए और मुश्किल होने वाला है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसा मैंने आपको बताया AI बाइट का दौर है, AI वीडियो भी बन जाते हैं। आपके पास वीडियो नहीं है, टेलीविजन के लोग जानते हैं कि खबरों को एस्टेब्लिश करने के लिए वीडियो की जरूरत होती है, एस्टेब्लिशमेंट विजुअल की जरूरत होती है। अगर मुझे विजुअल नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दीजिए, कहिए मुझे ब्रह्म कुमारी इसके हॉल के बाहर एक ऐसा विजुअल बना के दीजिए जिसमें थोड़ी बरसात हो रही हो, कुछ लोग इकट्ठा हो और मीडिया सम्मेलन की शुरुआत होने वाली हो। 35 सेकंड से 40 सेकंड में आपको वीडियो मिलेगा जिसको आप खबर के साथ एस्टेब्लिश कर सकते हैं। खबरें एडिट भी कर देता है, खबर चला भी देता है, खबर लिख भी देता है। और तो और अब एंकर की जरूरत भी नहीं है, स्टूडियो वीरान हो गए हैं, सारी चीजें वर्चुअल और बाहर निकल के आ गई है। आज तक पे शाम को आप खबर देखते हैं, एक एंकर आती है 8 बजे के शो में जिसका नाम है सना, देखा आपने, सना AI एंकर है। इसका दूसरा नाम अभी दिया गया है एक एंकर के साथ में 2.0। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ओरिजिनल एंकर और नकली एंकर में क्या फर्क है, वो सवाल भी करती है। अगर नकली एंकर को इकट्ठा कर दें, 3-4 एंकर्स को, और पूछें कि ये सामने 4 सेलिब्रिटी बैठे हैं टेलीविजन के, फिल्म के, इनसे सवाल करना है, तो वो पैटर्न फॉलो करेगी। शाहरुख खान बैठा है तो उससे क्या सवाल करना है, अक्षय कुमार बैठा है तो उससे क्या सवाल करना है, किसका किससे विवाद चल रहा है, कौन किस कारण सुर्खियों में है। AI एंकर तमाम चीजें फॉलो करके सवाल भी इकट्ठा करेगा, सवाल पूछेगा भी, और आपको लगेगा कि वाकई ये तो असली एंकर से भी ज्यादा इफेक्टिव है, उसके मेकअप की जरूरत भी नहीं है, इसको खिलाने पिलाने की जरूरत भी नहीं है, इसको वेतन देने की जरूरत भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि मीडिया हाउसेज आगे AI एंकर्स पे काम कर रहे हैं, हम आप जैसे एंकर्स को आगे भविष्य में अपनी नौकरी बचाने के लिए भी संकट करना होगा, सोचना होगा। पत्रकारों के नए नाम हो गए, पहले हम लोग कहा करते थे कि ये टीवी के जर्नलिस्ट हैं, टीवी जर्नलिस्ट, ये फोटो जर्नलिस्ट हैं, ये प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं। नए दौर की पत्रकारिता में पत्रकारों के शब्द भी बदल गए हैं, नए नाम कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, कंटेंट राइजर्स, राइजिंग क्रिएटर्स। देखिए कितने नए नए नाम आ गए हैं, इसमें पत्रकार तो कहीं भी नहीं है। हर चीज बदलती जा रही है AI के दौर में, और एक जो चीज छूटी हुई थी वो भी अब आ गई है, AI फिल्म। किसी कलाकार की जरूरत नहीं है, आप स्क्रिप्ट लिखिए, स्क्रीन प्ले तैयार कर दीजिए और डाल दीजिए और कहिए मुझे एक ऐसी फिल्म चाहिए देशभक्ति की जिसमें इन इन विषयों को छूते हुए मुझे 4 कलाकारों का एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हुए एक फिल्म चाहिए, आपको फिल्म मिल जाएगी। और अभी AI से बनी हुई पहली फिल्म रिलीज होने जा रही है। हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय AI नहीं है, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है क्या भविष्य की पत्रकारिता, भविष्य का सिनेमा, भविष्य का लेखन, भविष्य का सृजन किस दिशा में जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चिंतन इसलिए है, हो सकता है आज हम यहां बैठकर सशरीर सुन रहे हैं, कल को AI ऑडियंस मिल जाएगी आपको, AI वक्ता मिल जाएंगे आपको, कहीं इस रूप में सार्वजनिक तौर पर इस तरह के आयोजन करने की जरूरत न पड़े। AI से जो खतरे हैं उसकी भी मैं चर्चा करूंगा, लेकिन पिछले चुनाव में अगर आपने ध्यान दिया हो, पिछले चुनावों के दौरान ऐसे कई राजनेता जीवित हो गए थे जिनका देहावसान हुए बरस हो गए, वो अपने नए दौर के मुद्दों के साथ में वर्चुअल सभाएं कर रहे हैं, वही बॉडी लैंग्वेज है, वही भाषा है, लेकिन मुद्दे बदल गए हैं, AI एंकर लाइव सभाएं कर रहे हैं। तो देखिए भविष्य में जो चीजें बदलने वाली हैं उन सबको हमें समझना देखना भी होगा। एक और चीज, एक विज्ञापन में देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति किसी अधिकारी को रिश्वत लेते हुए कह रहा था आप मेरा काम कब करेंगे, और वो कहता है कि यहां कोई कैमरा लगा है जो तू मुझे धमकी दे रहा है, काम कब करोगे। उसने कहा अगर आप मुझे ये काम समय पे नहीं करके देंगे तो सब लोग देख लेंगे क्योंकि पूरी दुनिया लाइव देख रही है। उसने कहा यहां तो कोई कैमरा लगा हुआ नहीं है और न मैं तुम्हारे हाथों में या कपड़ों में कोई कैमरा देख पा रहा हूं। उसने कहा मैं गूगल ग्लास का इस्तेमाल करता हूं, स्मार्ट ग्लास। कितने लोगों ने सुना है स्मार्ट ग्लास? ये नए दौर का है, शायद किसी ने नहीं सुना है। स्मार्ट ग्लास आ गए हैं, थोड़ी मोटी फ्रेम के हैं, दो कैमरे यहां लगे हुए हैं, दो स्पीकर्स हैं यहां पर। आपको कॉल सुनने की जरूरत भी नहीं है, कॉल यहीं से सुन सकते हैं, यहीं से कॉल कर सकते हैं। फिल्म अगर देखना है, वीडियो देखना है, तो 3D की इमेज में थोड़ा दूर करके देख सकते हैं, यहां कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ भी। कितना जबरदस्त बदलाव आया है। सिर्फ 25,000 का एक मेटा ग्लास है, आप इसको लेकर एक अपनी नई दुनिया लिख सकते हैं, नई दुनिया रच सकते हैं। क्योंकि तकनीक के साथ कदमताल करना पत्रकारों का दायित्व है, जरूरत भी है। हम जिस यूनिवर्स में जी रहे हैं, उस यूनिवर्स के पैरेलल एक नया यूनिवर्स है जिसका नाम है मेटावर्स। सुना है किसी ने? ये मेटावर्स जो है आभासी दुनिया है, जिसमें आप अपने नाम से करेक्टर गढ़ सकते हैं, उन करेक्टर के साथ खेल सकते हैं, उन करेक्टर के साथ कविताएं लिख सकते हैं, उन करेक्टर के साथ आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो आभासी करेक्टर हैं, क्या आपस में झगड़ा भी कर सकते हैं? आप सोचेंगे मशीन के रचे हुए करेक्टर कैसे झगड़ा कर सकते हैं? लेकिन आपको बताऊं, 2024 में मेटावर्स में एक आभासी महिला करेक्टर ने एक आभासी महिला पुरुष करेक्टर पर छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज किया और ये एक कोर्ट में दर्ज भी हो गया। देखिए, मेटावर्स की दुनिया में हम जैसा जी रहे हैं, वैसी वैसी नई नई चीजें भी होती जा रही है। लेकिन इस पूरी दुनिया में आगे आने वाले दौर में किस तरह के खतरे हमें झेलने हैं? पूरी तरह से हम लोग निर्भर हो जाएंगे एआई पे? मुझे लगता है हाँ, हम निर्भर होने जा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कई सारी चीजें हैं जो निर्भर हो गए हैं, आगे भी होते जा रहे हैं। सृजन खत्म हो जाएगा, कागज कलम खत्म हो जाएगी, रोजगार खत्म हो जाएंगे, डीप फेक, आपका वीडियो इस तरह से दिखाया जाएगा जैसे आप ओरिजिनल हैं। रश्मिका मंदाना के केस में चूंकि उसने केस दर्ज किया तो पता चल गया। ऐसे कई मामले हैं जिसमें पता भी नहीं चलता है कि डीप फेक से बनाई गई वीडियो आपके चरित्र पर अंगुली भी उठा सकते हैं। ऐसे कई वीडियो असली और नकली का फर्क करने में भी मुश्किल होती है। कभी कभी जो साइबर फ्रॉड का उदाहरण देखते हैं, एआई का एक परिवर्धित और परिष्कृत उदाहरण है। आपका वीडियो, फोटो, आवाज, आपकी बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमाएं, इस तरह से इकट्ठा करके कैसा वीडियो बनाएगा और वो उसको व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे चलाकर आपके परिजन को कॉल करेगा और वो जो चाहेगा उससे बुलवाएगा। आपको लगेगा मेरा ओरिजिनल रिश्तेदार है या कोई और है। ये साइबर फ्रॉड की ठगी के कई सारे तरीके सामने आ रहे हैं। वो आवाज के पैटर्न को फॉलो करेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज के पैटर्न को फॉलो करेगा। ऐसे तो प्राइवेसी गायब हो जाएगी। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारी प्राइवेसी किस हद तक खतरे में पड़ने वाली है। ऐसी प्राइवेसी जो जहां से एथिक्स भी गायब हो गया है। अभी आप देखते होंगे कई सारे वीडियो मजे लेने के लिए होते हैं, आनंद लेने के लिए होते हैं, लेकिन उनमें कितने बड़े एथिक्स का वायोलेशन छिपा हुआ है। नेताओं के वीडियोज, अभिनेताओं के वीडियोज, इन सारे वीडियोज में तमाम तरह के वायोलेशन हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ मन और शरीर भी थक रहा है। कंप्यूटर सिंड्रोम आ रहा है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम आ रहा है, इंटरनेट एडिक्शन आ रहा है, सोशल मीडिया फोबिया आ रहा है, ऑनलाइन एंग्जाइटी आ रही है और सबसे बड़ा फोमो, हम क्या मिस करने वाले हैं? इस बड़ी क्रांति के दौर में मुझे लगता है आगे इंटरनेट पर कंटेंट की लड़ाई है। सबसे बड़ी चीज कंटेंट की लड़ाई है, क्योंकि इंटरनेट एक क्रूर व्यावसायिक माध्यम है जो कंटेंट के माध्यम से चलता है, व्यावसायिकता के माध्यम से चलता है। एआई आपको वो सब कुछ करके देता है जिसकी आपको जरूरत है। वो वैसे पैटर्न बना के देगा आपको जो आपको बेहतरीन विकल्प देता है, लेकिन आपको ये सोचना होगा क्या असली है क्या नकली है। कई बार समय सुझाव मन में भी आता है कि क्या कहीं असली और नकली का फर्क कर सकते हैं, या आपको लगता है कि कहीं आपकी वीडियो का, फोटो का मिसयूज हुआ है या आपके किसी ऑडियो पैटर्न का मिसयूज हुआ है, तो निश्चित तौर पर आपको विजिलेंट होना होगा। क्योंकि आप सब लोग पत्रकार हैं, देश भर से आए हुए हैं, मुझे लगता है कि खबरों की लड़ाई के बीच हमें अपनी सृजन क्षमता को भी निर्धारित करना होगा। कहीं हमारी सृजन को चुराया तो नहीं जा रहा है, कहीं हमारे मन को तो नहीं चुराया जा रहा है, कहीं हमारे वीडियोस का गलत इस्तेमाल तो नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे टूल ऐसे हैं जिसका पता लगाया जा सकता है। एक वेबसाइट है siteengine.com, वहां आप जाके पता लगा सकते हैं कि असली है या नकली है। और अगर आपको लगता है कहीं आपके वीडियो या फोटो का गलत इस्तेमाल हुआ है, तो आप stopnicc.org पे जाके शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं, 1930 पे शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजें आपकी विजिलेंट होने पे होगा। मैं बड़े बड़े आईएएस आईपीएस देखता हूं, बड़े बड़े अधिकारी देखता हूं जो साइबर फ्रॉड में आ जाते हैं, इंटरनेट अरेस्ट हो जाते हैं, घंटों इंटरनेट पर अरेस्ट होकर अपने पैसा गंवा देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपनी आंखें, नाक, कान, गला खुला नहीं रखते हैं। हमें विजिलेंट होने की जरूरत है। एआई की चुनौतियां बहुत हैं, एआई के खतरे भी बहुत हैं, लेकिन एआई भविष्य की पत्रकारिता का एक नया नमूना पेश करने वाला है। अगर हम इसे संभावना के तौर पर देखें तो मुझे लगता है बहुत बेहतर होगा। खतरे के तौर पर देखें तो आंख खुली रखें, सिर्फ नजर रखने की जरूरत है। मुझे लगता है भविष्य की पत्रकारिता AIPT की होगी। भविष्य में सिर्फ एथिक्स बचा रहे तो मुझे लगता है पत्रकारिता बची रहेगी। ये हम सब लोगों के लिए सोचने और करने का विषय है। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता कुंजन आचार्य जी का। आज के समय में AI को यूज करते हुए या सोशल मीडिया पर हम जितना अधिक टाइम बिताते हैं उसके क्या क्या नुकसान है, साथ साथ उसके क्या क्या समाधान हो सकते हैं, आपने स्पष्ट तरीके से हमें बताए। एक बात आपने कही कि हम स्मार्ट चीजों का यूज करते हैं। जितना हम स्मार्ट चीजों का यूज करते जा रहे हैं, क्या उतनी स्मार्टनेस हमारे विचारों में आई है, हमारे व्यक्तित्व में आई है? क्या उतने ही स्मार्ट तरीके से हमारे सामने जो जीवन में चैलेंजेस आ रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम उसको फेस कर रहे हैं? उसको फेस करने का, उनको असली या नकली है, या उन चीजों के ऊपर जीत पाने का सिर्फ एक ही तरीका है जो ब्रह्मा कुमारीज हर वर्ष यहाँ पर आयोजन करती है मीडिया सेमिनार का, और आप सबको सुबह के सत्र में मेडिटेशन के सेशन से अवगत कराती है, आत्म शक्तियों से अवगत कराती है। वो एक ही माध्यम है मुझे लगता है कि अपने आप को सशक्त करके सृजनात्मक बनाने का। इसी विषय पर आगे अपने विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करूंगी आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर भ्राता वाई बाब जी। आप हैदराबाद से पधारे हैं, आप पब्लिक रिलेशन वॉइस के एडिटर के रूप में कार्यरत है। वाई बाब जी, आप सभी उनका तालियों से अभिवादन करेंगे और सुनेंगे आज के विषय पर आपके विचार।
Thank you for that nice introduction, sister. Om Shanti. Good evening. The time allotted to speakers, all speakers here is 7 minutes. So, in order to confine myself to the time frame, I have drafted my impressions and perspectives, reduced that into text. Respected dignitaries on the dais, Brahma Kumari's sisters and brothers, distinguished journalists, media professionals, it is our honor to be here in the serene and spiritually charged atmosphere among the seekers of truth and the practitioners of ethical communications, that is Brahma Kumari's. Media conferences here bring together minds that are committed to the power of truthful information with the responsibility to uphold peace, unity and trust in the society. The concern of all of us here is that journalism as an institution is at a crossroads, propelled forward by technological advances, stretched by the power of social media and challenged by the rise of artificial intelligence. The task before us is to navigate this situation ethically, ensuring that the journalism continues to serve the society, not simply a spectator. The new reality is a fusion, that is social media plus artificial intelligence. Together, they shape how people receive, perceive, and process information. To understand the scale of the transformation, let us have a look at the statistics that are both telling and sobering. Brother Karamchandji put forth certain statistics over and above that. Today, India has around 692 million social media users, almost half the population. On an average, each user spends 2.4 hours daily on these social media platforms. The dominant players in this space of social media are YouTube with over 467 million users, followed by Facebook with 378 million and Instagram with 289 million users. WhatsApp, though more personal, is equally influential in shaping public opinion and spreading misinformation. These numbers reveal that vast sections of our population now receive news, commentary, and information not from conventional newspapers or traditional broadcasters, but from these digital platforms. AI tools, whether in the form of content recommendation engines or automated writing assistants or synthetic media generators or even moderation systems, all are deeply embedded in the way this information is produced, shared, and consumed. But with this transformation come serious ethical challenges. What are they? The first is accuracy, or the battle between fact and fiction. Information now travels, as you all know, at lightning speed, and misinformation travels just as fast as that, sometimes even faster than information. While AI can help detect fake news, it can just as easily generate convincing deep fakes and misleading content that can sway public opinion or damage the reputation of both individuals and the institutions as well. The second challenge is bias and discrimination. AI systems are only as good as the data they are trained on. If the data reflects human biases, be it gender, caste, class, or even political orientation, the AI will amplify them quite often invisibly. The result is that some voices are highlighted while others are silenced. Some narratives are legitimized while others are marginalized. The third challenge is privacy and surveillance. Social media platforms collect staggering amounts of personal data from all of us. AI analyzes this data in ways that can intrude into the most private aspects of our lives. For journalists, this also raises the question of protecting the sources and maintaining confidentiality, which becomes far more complex in a world of algorithmic tracking. The fourth challenge is accountability and transparency. When AI decides what news content people should see, or even generates news summaries and headlines, who is responsible if something goes wrong? If an AI system promotes hate speech, spreads propaganda, or directs truth, can we hold a person accountable? The opacity algorithms makes this a serious ethical dilemma. And the greatest challenge is erosion of human agency. As AI takes over more tasks, there is a real danger that human judgment, editorial oversight, and ethical reflection get definitely sidelined. It is generally tempting to outsource decision-making process to algorithms, but in doing so, we lose the very human heart of journalism. So, how has journalism tried to anchor itself in this turbulent environment? One important reference point is Paris Charter on AI and Journalism, launched by Reporters Without Borders. We call it Rapporteurs Sans Frontières. Its principles are very clear. First, the core ethics of journalism, that is truth, fairness, impartiality, non-discrimination, and respect for privacy, must guide any use of AI. These values cannot be compromised, however advanced the technology is. Second, human agency must remain central. Editorial judgment and value-based decisions cannot be handed over to the merely machines. Third, AI systems should undergo prior and independent evaluation to ensure they comply with ethical values and to test for unintended harm. Fourth, media outlets must remain responsible and accountable for everything they publish, even if AI was used in its creation. Another significant initiative is the work of the International Consortium of Investigative Journalists, which has committed itself to global guidelines for the use of AI. Their emphasis is on the transparency, fairness, avoiding harm, and ensuring that audiences are aware of whenever AI has been involved in journalistic work. From these frameworks, certain practical steps emerge that we, as journalists and media organizations, can consider. First, we must embed ethical review in all AI adoption before using any AI tool, whether for writing or moderation or content curation. We must assess its strengths, its risks, and the possibility of misuse. Second, we must maintain transparency. Let audiences know if AI has been used, whether in writing a news brief or curating a news feed. Third, we must strengthen fact-checking and verification. AI can assist the flagging suspicious content, but human verification must remain essential. Fourth, we must protect privacy and sources. No matter how powerful algorithms become, the journalists' promise to protect whistleblowers and vulnerable groups must remain sacred. Fifth, we must train journalists not only on digital literacy — you are talking about information literacy and digital literacy — but also in AI literacy. Journalists must understand how algorithms work, where bias arises, and how manipulation can occur. Sixth, we must build accountability structures within media organizations, say oversight committees, editorial boards, and clear lines of responsibility for errors if AI is involved. For us, why does all this matter so much? It certainly matters because journalism without ethics loses legitimacy. We all know that trust is the currency of journalism. Without trust, our profession cannot fulfill its democratic purpose. When information is distorted through misinformation, disinformation, malinformation, polarization, manipulation, etc., etc., the society suffers, and the role of media as fourth estate gets eroded. Ethics is not an accessory. It is the core. Without it, journalism is likely to become either an entertainment or propaganda, or for the worse, a tool of division. We all agree that Brahmakumari's the consistency is remarkable. For decades, they have carried forward the same message of peace, self-transformation, and service without any deviation, without any dilution, and without any hidden agenda. This is why Brahmakumaris are respected by the governments, government of the day, past governments, international organizations like the United Nations, and millions of people across the globe, almost over 130 countries. As we reflect on this, the lesson becomes very clear for us. Journalism, like Brahmakumari's message, must be consistent, ethical, and free from hidden motives. Technology may change, platforms may evolve, but the essence of ethical communication remains the same. Now, as we look to the future of journalism, we must understand that social media and AI are here to stay. They will not go. They will not disappear. They will only become more powerful and more embedded in our lives. Our task, therefore, is not to resist the technology that is evolving, but navigate it wisely, ensuring that it serves the society, not the other way around. As we do so, we shall have to commit ourselves as journalists to a few simple but powerful principles. First, in our newsrooms and content creation, ethical values must be non-negotiable. Second, we must strive to be pioneers in transparency, truthfulness, and respect for human dignity. When our actions mirror our words, confidence deepens. And confidence, once nurtured, becomes the soil in which unity grows. Journalism must not only be modern, it must also be noble. The nobility lies not in the technology or the speed it travels, but in purpose, in service, and in truth. We need to remind ourselves that journalism is the bridge between the government and the governed. Journalism is the voice of the voiceless. Therefore, I conclude saying that in a time of noise, let journalism be the voice of for clarity. In a time of division, let journalism be the voice of unity. In a time of distrust, let journalism be the voice of integrity. Thank you. Om Shanti. Jai Hind.
Thank you, brother.
Thank you.
मैं देख रही हूँ आप सब ऐसे थके-थके से बैठ रहे हैं. क्या बात है? सभी जरा एक्टिव हो जाए. बड़ा सुंदर सा विषय चल रहा है, हमारे जीवन से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि एआई को सबसे ज्यादा यूज हम ही करते हैं. आजकल बहुत सुविधाएं हो गई है. वो एक दौर था जब न्यूज हाथ से लिखी जाती थी, फोटो कलेक्ट किए जाते थे, कंटेंट बनाया जाता था, घंटों सोचा जाता था कि क्या हमें देना है समाज को, क्या हम प्रेजेंट करें इस चीज को. आज वो चीजें बहुत इजी हो गई हैं. जो घंटों में न्यूज बनती थी, एक आज वो मिनटों में बनने लग गई है. लेकिन उसका सबसे ज्यादा नुकसान भी हम ही झेल रहे हैं. तो इतना सुंदर सब्जेक्ट है. मानती हूँ शाम का टाइम है, शायद सबके रेस्ट का भी टाइम हो सकता है, लेकिन फिर भी आज ये आयोजन इतना सुंदर किया गया है. हम सभी एक बार फिर से अलर्ट होके बैठ जाएं, कोई रिलैक्स मोड में नहीं बैठे, अलर्ट होके बैठ जाएं. इस विषय पर फिर से अपने विचार रखने के लिए मैं निमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र कौशिक जी. आप जयपुर स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन के डीन के रूप में कार्यरत है प्रोफेसर नरेंद्र कौशिक जी. भाई जी के स्पीच के बाद, उनके विचार रखने के बाद, एआई और वैल्यूज, इसके ऊपर हम एक छोटा सा गेम करेंगे. ठीक है? तो सभी आप प्रेजेंस ऑफ माइंड और अलर्ट मोड में ही रहिएगा.
रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, अदर डिग्निटरीज ऑन द डाइस, माय फ्रेंड्स जर्नलिस्ट एंड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, Let me start with an anecdote. This happened some 10-15 days back. I got a WhatsApp call from a friend. I mean, it showed that friend's name on my mobile. And he had taken my son also in the same chat, in the same call. So, I picked up the phone. But nobody spoke, and thank God nothing happened. And then what I did, I called back this friend. He is based in Delhi, and he told me something very interesting. He said, you had also called up last evening. And the fact is, I never had called him up. And he told me that I also never called you up. So let me tell you, this is identity theft. And this is happening. So, this is a danger from AI. This is a danger from digital. And let me tell you, because AI is like a monster. If you don't control it, it will control you. It's like earlier we said it about our mobiles, our mobile, that if you allow mobile to control yourself, it will control you. And if you control the mobile, then obviously it will be an assistant of yours. So let me tell you, this was just one incident which talks about the kind of dangers the AI poses. There are also other dangers, like I'll tell you another incident. I visited Mewat in 2016-2017. You remember that was the time Jio had started giving data to people, free data to people. And around half a dozen cases were registered in Mewat, and these cases were about people abusing each other's gods and goddesses on WhatsApp, on Facebook. So this was happening there because Obviously, people were not, not digitally literate, but they were given this data, use data, and they didn't know how to use this data. So they were misusing it. So that's another danger. Then, you must have read about Aishwarya's case, Aishwarya, Karan Johar, and Abhishek Bachchan. They went to court and they asked for personality rights, and they've been granted personality rights. And let me tell you, this happened because this deep fake is creating havoc. Deep fake, on deep fake, people are, using pictures of celebrities, of, actresses, and obviously without their consent. So these are the dangers, that AI poses. You all know about what social media can do. Let me tell you, there are other dangers also. Social media also can be a dangerous source of misinformation. Then misinformation, bias, I've already spoken about identity theft. I've already spoken about privacy. Declining trust in media. These are the issues we'll have to grapple with. These are the issues like media persons will have to grapple with. Let me tell you, AI is doing a lot of things. Sometimes when we ask our students for content, for some paper which we would like to write with them, then they generally copy everything from AI. So, but good part is, if you want to check whether the content has been copied from AI, AI also suggests platforms. AI also gives you tools where you can actually check whether the content has been copied or it's original. So, if you want to control AI, then obviously you'll have to strengthen your ethics. You'll have to strengthen regulation. I wouldn't call it regulation. I would call it legal control on social media. So solutions, if you want to talk about solutions, what are the solutions of these dangers from AI? Then one solution is disclosure, that you always disclose that I have taken it from AI. And in fact, a lot of media houses are already doing it. Then there should be bias audits. Obviously there should be human oversight. So these are the things. Then you'll have to make sure that trolls and, there is no online harassment of people by trolls. So, we need to strengthen. We have the laws. We have the laws like that IT Act is there. Then there are also provisions in Bharatiya Nyaya Sanhita. We need to apply these laws and protect people. So, like I was telling you, when I got this call 10-15 days back, I immediately went to bank and I told them that this has happened, and they said, but your screen didn't go blank. That's what I was told, that if somebody copies your data, then your screen will go blank. So if your screen go blank, then you can approach the police. You can tell the police that this fraud has been committed, or if somebody takes out money from your account. Well, these are the dangers. Well, obviously, we also need to create digital literacy, we'll have to make people digital literate. We'll have to make people AI literate. Good part is there are organizations which have already started doing it. There's this Adira, my friend owns this organization. He has started training people about AI. So we need to be literate about AI. We need to be literate about social media. So these are the principles. And also journalists actually need to prefer accuracy to speed. Because if you go for speed, then there will obviously be inaccuracies. There will be misinformation. There will be fake news. So accuracy is a must. And let me tell you, I don't know about electronic media, but print media, number of newspapers are already doing it. So you'll have to prefer, you'll have to, give preference to accuracy to speed. There has to be transparency. There has to be diversity and inclusiveness. So these are the things. There must be human oversight, like I'm second time talking about it. Because without human oversight, obviously, there'll be mistakes. So human judgment should have the first say. AI should come second. So these are the things I want to talk about. And thank you very much. All the best.
Thank you. Thank you so much, Brataji. सबके वक्तव्य से एक बात तो स्पष्ट होती है, आदर्श पत्रकारिता के लिए हमारे जीवन में नैतिक मूल्यों का होना बहुत बहुत जरूरी है. जीवन में अगर नैतिक मूल्य नहीं है तो चाहे पत्रकारिता हो, चाहे कोई और प्रोफेशन या कोई और व्यवसाय, हम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते हैं. इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए हम एक छोटा सा गेम करते हैं. सभी एक्टिव होकर बैठ जाए, हाथ में जो भी चीजें हैं सब साइड में छोड़ दें. इमेजिन करें, इमेजिनेशन का गेम है. चाहे आप आंख बंद करके करें, चाहे आप आंख खोल के करें. इमेजिन करें, दो साइड है, एक तरफ परमात्मा शिव है, एक तरफ एआई की तरफ से एआई ही है जो हमें बहुत इंस्टेंट सारी चीजें देता है. क्योंकि पहले के समय में मेहनत की जाती थी और फिर वो जो फल मिलता था उसका बड़ा आनंद मिलता था, सफलता भी बहुत जल्दी मिलती थी. आजकल एआई का जमाना है, इंस्टेंट का जमाना है. इसलिए आज के मेडिकल साइंस ने भी इंस्टेंट चीजें निकाल दी. इंस्टेंट पेन रिलीफ इंजेक्शन, इंस्टेंट पेन किलर, सारी चीजें इंस्टेंट होने लग गई है. लेकिन उस इंस्टेंट होने वाली चीजों का बहुत ज्यादा नुकसान भी हम ही देखते हैं. इसलिए दो चीजें हैं, ध्यान से आप सुनेंगे. वरदान मिलेगा या श्राप? एआई की तरफ से आपको श्राप मिलेगा तो आपको उसको अपने ऊपर लेना नहीं है. लेकिन परमात्मा की तरफ से आपको वरदान मिलेगा तो अपने आप को आपको क्या कहना है? तथास्तु. क्या कहना है? आप आंखें खोल के भी कर सकते हो, आंखें बंद करके भी कर सकते हो. एकदम अलर्ट मोड में बैठ जाए. आप सभी मेहमान भी बहुत अच्छे से अलर्ट होके बैठ जाए. अपना एक हाथ राइट हैंड आगे करे ऐसा और उसके अपने माथे पर रखे. अगर हमें वरदान मिलता है परमात्मा की तरफ से तो हमें उसको माथे पर रखना है, इमेजिन करके कि शिव परमात्मा ने मुझे वरदान दिया, उसको तथास्तु कहेंगे. और अगर वो एआई की तरफ से हमें श्राप है, बावजूद आप तथास्तु कहते हैं, तो वाणी कहीं सिद्ध ना हो जाए. करें शुरू, आंखें बंद करें सभी. मैं एक संकल्प दूंगी, उसको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है आपके ऊपर डिपेंड है. मैं शांत स्वरूप हूं, कहो मुंह से तथास्तु. लेना है ना? मैं शांत स्वरूप हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं फेक न्यूज स्प्रेड करती हूं नहीं, मैं बिल्कुल भी एआई का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करती हूं तथास्तु। मैं बिल्कुल हेल्दी हूं, मैं हैप्पी हूं, मैंने एआई का गलत इस्तेमाल किया है, मैं फेक न्यूज नहीं स्प्रेड करूंगी कभी भी, तथास्तु। मैं बिल्कुल भी सशक्त हूं और सशक्त समाज का निर्माण करने में अपना योगदान दूंगी, मैं हर समाज के निर्माण में अपना सकारात्मक कदम आगे बढ़ाऊंगी। वेरी गुड, आप तो बहुत अच्छे हैं। अब फिर से अपना राइट हैंड ऊपर कीजिए, पीठ की तरफ ले जाइए और अपने आप को शाबाशी दीजिए कि वाह, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितना अच्छा हूं। सभी एक बार अपने आप को तालियां बजाए कि देखिए, जो ब्रह्मा कुमारीज जो एक संकल्प लेकर चल रही है कि सृष्टि पर वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना हो, उसमें आप सबका बहुत अच्छा योगदान है। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे आमंत्रित करूंगी सिस्टर अनुना अग्रवाल को, जो आप मुंबई से आई है पॉडकास्टर, आपसे निवेदन है कि आप इस विषय पर अपने विचार विमर्श कर रखिए।
ओम शांति। पहले तो मैं ब्रह्म कुमारी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलूंगी कि मुझे इतने दिग्गजों के सामने, इतने एक्सपीरियंस लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला, सो थैंक यू सो मच। जर्नलिज्म के बारे में मैं अभी, जैसे दीदी ने बताया कि मैं पॉडकास्ट करती हूँ, इस समय सोशल मीडिया में ज्यादा कोशिश कर रही हूँ सीखने की, तो ये जो एथिकल एआई का सोशल मीडिया पे क्या फर्क है, उसका मैं थोड़ा अपनी साइड से बताना, मैं एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी, और मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को पता चले कि किस तरीके से हमें एआई को यूज करना है। क्योंकि अगर हम एआई की बात करें तो एआई इनएविटेबल है, वो आ चुका है ऑलरेडी, हम अभी एआई की दुनिया में जी रहे हैं, बट उसको हम किस तरीके से एथिकली यूज कर पाए वो हम पे। तो शुरुआत में ये जो टॉपिक है एथिकल एआई जो नाम है, तो उसको थोड़ा ब्रेक डाउन करके करना चाहूंगी। एथिकल क्या होता है? हमारे मन की एक आवाज, जो हमने एक रूल्स बनाया हमारे लिए कि ये सही है ये गलत है, तो वो हमारे एथिक्स है और हम उसको फॉलो करते हैं। और जब एआई की बात होती है तो एआई क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल मतलब मशीन, जो कोई इंसान नहीं था, जिसके कोई एथिक्स नहीं थे, पर उसको हमने इंटेलिजेंस दे दी। एक मशीन को इतना डेटा, उसको दुनिया में जितना डेटा है, कोशिश किया कि सारा डेटा उसको दे दो और बोला कि इसको तुम अब ऐसे कंपाइल करके और सामने वाले इंसान की मदद करो। बट हमने अब ये अब नेक्स्ट आया है कि एथिक्स डाल रहे हैं उसमें, कि एक इंटेलिजेंट मशीन तो बन चुकी है बट वो थोड़ा एथिक्स के साथ काम कर ले, कि शायद वो डेटा जो यूज करे उसको सही और गलत क्या होता है उसको पता कर पाए और वो चीज यूज करके काम करे। सो इसीलिए एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अब ये क्यों आया है, मतलब मैं जितना जानती हूं, मैं जितना पढ़ती हूं इसके बारे में, तो बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, जिनके पास कोई एक जॉब डालोगे तो हजारों के उसमें रिज्यूमेज रोज आ जाएंगे। अब वो जब रिज्यूमेज आते हैं तो कोई इंसान जो उस रिज्यूमे से चाहता है कि किस इंसान को लेना है या किस इंसान को नहीं लेना, तो उसका एक माइंडसेट, एक जो हमने एथिक्स या रूल्स होते हैं ना कि शायद मैं इसको अपने हिसाब से लूँ, अपने एक अपना डिसीजन होता था, तो वो उस हिसाब से उनको लेते थे। बट उसमें ये होता है कि बहुत बार ये इशू आए हैं कि जो हमने जेंडर इनइक्वालिटी और ऐसी सारी चीजें देखी कि मेल्स को लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या फिर कभी एक और एग्जाम्पल अगर दूं कि कोई लोन लेने गया तो मेल जो वर्किंग है उसको क्रेडिट ज्यादा मिल रहा है, क्रेडिट स्कोर, और इसलिए उसे प्रेफर कर रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी जो बायसनेस होती थी एक इंसान के थ्रू, तो उस चीजों को सॉल्व करने के लिए एक एथिकल फ्रेमवर्क एआई के लिए बनाया गया कि चलो ऐसा करते हैं कि अब एआई के पास, हमने एक कंपनी है जिसके पास 100 रिज्यूमे आए और उसने एक रिज्यूमे को सेलेक्ट किया, कंपनी ने बोल दिया मुझे ये कीवर्ड्स है, मुझे ये चीजें चाहिए जिससे मैं एक इंसान को चाहता हूं अपनी लाइफ में। बट अब उस वो कीवर्ड्स को इंसान, जो सामने वाला इंसान जिसने रिज्यूमे दिया था, वो नहीं जानता कि वो कीवर्ड्स जो कंपनी ने डाले हैं वो थे या नहीं। तो जो एआई सिस्टम था, एआई सिस्टम ने तो वो कीवर्ड्स देख के जो जो कंपनी के चीजें थी उससे उसने उसको हायर कर लिया, बट शायद कोई ऐसा इंसान था जो शायद कीवर्ड था एक कंपनी डाल रहा था कि मुझे क्रिएटिव इंसान चाहिए, बट बंदे ने क्रिएटिव की जगह लिखा था मैं स्मार्ट हूं, तो बस क्योंकि क्रिएटिव ने लिखा था और वो बंदा गया, उसको वो जॉब नहीं मिली, बट जबकि वो जॉब शायद बहुत ज्यादा डिजर्व करता था। तो ये एआई जो चीजें आ रही हैं इसका फायदा बहुत है, बट नुकसान भी उतना है हम लोगों के लिए अगर हम एआई नहीं सीखेंगे। तो मैं पर्सनली ये मतलब ये मैं सोचती हूँ कि जो मैंने स्टार्ट में बोला कि एआई आ गया है, मतलब हम जब सोशल मीडिया की बात करते हैं तो सोशल मीडिया पूरा एआई है, मतलब आप फोटो डाल रहे हो, मैं फोटो डाल रही हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन करती हूँ, तो मेरा हर कंटेंट वायरल जाएगा। वो मेरे शायद कंटेंट पे भी डिपेंड करता है कि मैं कैसा कंटेंट बना रही हूँ, वो एथिक्स है मेरे कि मैं अच्छा कंटेंट बनाऊं, बट उसके साथ मेरे को एआई आता है, मैं किस समय पे मेरा एआई वो कंटेंट को ऊपर लेके जाएगा मेरे को वो आता है, या किस टाइम पे मैं डालूं, वो सारी चीजें मुझे सीखना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव होता है कि सोशल मीडिया या कोई भी आगे हमें किसी चीज में भी जाना है तो उसके लिए एआई कितना जरूरी है। बट जो सर ने, इतने रेस्पेक्टेड सर ने अभी जो बातें करी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत है, और मैं घूम फिरा के पूरे कॉन्वर्जेशन में एक ही चीज बोलने वाली हूँ कि नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा, सही तभी होगा जब हम सीख पाएंगे। क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट कैसे आता है आजकल, मैं एक सिंपल एक जेंजी ट्रेंड बताती हूँ, मैं थोड़ा उस एरा से आई हूँ तो वही सीखती हूँ। तो क्या है कि अब आपने चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, ये सब हम देखते हैं तो ट्रेंड आते हैं। एआई क्या करता है कि लोग एआई को सीखें, एआई में घुस जाएं, इसके लिए वो लोगों को नई नई चीजें देता है जो उनको फायदा करेगा, और साथ में फायदा तो करेगा बट उसकी आदत पड़ जाएगी एआई को, मतलब एआई की आदत पड़ जाएगी, तो इसलिए वो कोशिश करता है। तो एक नया ट्रेंड लाए थे कि अपनी फोटो डालो गूगल पे और उस पर लिख दो कि मेरी ये फोटो है, उसको एकदम सुंदर बना दो, उसके लंबे लंबे बाल कर दो, कमर पतली कर दो, विंटेज दिखा दो, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ दिखा दो, और एआई एग्जैक्टली आपको वैसी फोटो बना के आपको दे देगा। और ये हजारों लाखों लोगों ने इंडिया में किया कि उन्होंने अपनी फोटो गूगल पे डाल दी, वो जो एआई था चैट जीपीटी या जेमिनी, गूगल का जेमिनी, सबने वो फोटो डाली और उसपे उन्हें बहुत सुंदर फोटोज आई और उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली है। मतलब एक साइड ये अच्छा है कि हमारे ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं कि हमें बॉलीवुड के साथ हम नहीं मिल पाए तो शाहरुख खान मेरे साइड में खड़ा है वो पिक्चर में, बट उसका जो डाउन साइड है कि लोगों ने कभी ये नहीं सोचा कि वो जब वो फोटो उन्होंने डाली है तो जनरली ये जो गूगल और ये चैट जीपीटी होते हैं ना, ये किसी भी इंसान के एक डेटा लेने के लिए करोड़ों रुपए पे करते हैं कि उसकी एक इंसान की जो कुंडली बोली जाती है कि सारी फोटोज डेटा सब आए, तो डेटा लाने के लिए, पर हम हर इंसान ने अपनी फोटो, अपना डेटा कि उसकी क्या इच्छा है सारी खुद परोस के उनको दी है। और यही चीज जो एक डिजिटल फुटप्रिंट होता है ना, आज आपने ये देखा होगा, बट मैं बहुत कॉमन चीजों के बारे में बात करना चाहती हूँ जो एआई के साथ हो रही है, कि आपने सबने देखा होगा कि आप जब भी कोई चीज के बारे में बात कर रहे हो या आपने कोई भी गूगल पे सर्च की तो नेक्स्ट डे इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह आपको वही चीज दिखने लगेगी, उसी के एड्स आने लगेंगे। क्यों आते हैं, कभी सोचा है? वो यही ये एआई जो आप, जैसे सर ने बात की थी सीरी की, चैट जीपीटी की, गूगल की, सब सुनता है आप क्या लिखते हो, क्योंकि एआई का काम क्या है, उसे डेटा इकट्ठा करना है लोगों के बारे में, लोगों की इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो हर एक चीज को सुन के और आपका डेटा इकट्ठा कहीं बैकग्राउंड में करता जा रहा है। और एक ये चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलना चाहूंगी जब एआई की बात होती है, कि हम आज हमने कहीं किसी से मिले, किसी ने कोई नई एप्लीकेशन की बात करी तो हमने वो फटाफट वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली। अब उस इंस्टॉल करने पे क्या होता है, उसमें वो एक्सेस मांगता है कि आप यू नो माइक्रोफोन अलाउ करते हो क्या, या कैमरा अलाउ करते हो क्या, या लोकेशन अलाउ करते हो क्या। अब ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि एआई को तो डेटा इकट्ठा करना है, वो हमने बिना देखे अलाउ 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 दबा दिया लोगों ने और एआई ने उसे इकट्ठा कर लिया। अब उसके बाद आपको वो, आप नॉर्मली ऐप यूज कर रहे हो, आपको कुछ नहीं होगा, बट एआई हर चीज, आप कहाँ जा रहे हो उसे लेके, आप कौन सी ऐप यूज करते हो, क्या खरीदते हो, क्या खाना पसंद करते हो, कैसी वीडियोस देखते हो, वो सब इकट्ठा करता है। तो मतलब ये बहुत बेसिक चीज है कि एआई आप यूज तो करोगे, कोई ऐप आई है तो आपका ऐप यूज करना ही पड़ेगा, चैट जीपीटी आई है तो वो बहुत काम सॉल्व कर रही है तो आप यूज करोगे, बट आप जब कर रहे हो उसके बाद डेटा में जो परमिशन वो मांगता है उसे नो दबाओ उसकी, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो परमिशन मांगेगा पर उसकी जरूरत नहीं होगी, तो उसको नो दबाओ, या आपके एक्सेस चेक करो कि लोकेशन किसी, कौन कौन सी ऐप है जो मेरी लोकेशन मांग रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें ना, ये जो डेटा की बात होती है, ये प्राइवेसी में बहुत हेल्प करती है। तो मैं मतलब मैं पढ़ रही थी, आगे जाके ऐसा बोलते हैं कि जैसे खाने पे लेबल होते हैं ना कि दिस इज 100% ऑर्गेनिक, तो ये एक टाइम पक्का आएगा कि हर इंसान पे सोशल मीडिया में लिखा जाएगा कि इज 100% ऑथेंटिक ह्यूमन, ही इज नॉट एन AI, क्योंकि AI ही ऐसा होने वाला है कि आप फर्क नहीं कर पाओगे कि सोशल मीडिया फेसबुक पे कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी प्रोफाइल असली है या कौन सी नकली है. तो उसको बाइफरगेट करने के लिए हमको सीखना पड़ेगा और हमें सबसे पहले अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी पड़ेगी. यही इसीलिए एथिकल फ्रेमवर्क्स की जब हम सोशल मीडिया और इन सब पे बात करते हैं, ये बन रहे हैं. लोग अगर AI लेके आ रहे हैं तो वो कोशिश कर भी रहे हैं कि उसका अच्छी तरीके से यूज हो, बट अगर अच्छे लोग यूज करते हैं तो होंगे ऐसे लोग जो गलत यूज भी करेंगे, और जिस वजह से हमें AI पे वो ट्रस्ट इश्यूज हैं. तो अल्टीमेटली मैं यही बोलूंगी कि आप सब हैं, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, आपके बच्चे सोशल मीडिया यूज करते हैं, तो AI से भागने की जगह AI को सीखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उसको रोक तो नहीं सकते. एंड क्वेश्चन यही है कि AI तो आ चुका है, बट AI को अब हम पे हावी होने देना है या उसके साथ हमें आगे चलना है? That's what we need to think about. Thank you. Om Shanti.
Thank you so much, बहन अनोना जी. बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी. AI का यूज करते करते मुझे लगता है वो समय दूर नहीं है कि मनुष्य जनजाति विलुप्त होकर रोबोट का जमाना आ जाएगा. कई जगह शायद आ ही गया है, और कई जगह शायद कई लोग कहते भी है कि रोबोट ही रहे हमारे आसपास, सारे काम एकदम इजी हो जाए तो कितना अच्छा होगा. तो इन्हीं विचारों के साथ मैं आगे आमंत्रित करना चाहूंगी भ्राता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी जी को. आप असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज जयपुर से पधारे हैं, आपका स्वागत है. आपसे अनुरोध है आप अपने विचार रखें इस विषय पर. एक और बात कहना चाहूंगी सभी स्पीकर्स से, आप कृपया अपने समय में अपना वक्तव्य पूरा करें. इस सेशन के लास्ट में ऑडियंस इंटरेक्शन भी है और उसके बाद समापन सत्र तुरंत ही है, इसलिए थोड़ा अपने समय पर वक्तव्य पूरा करें.
ओम शांति. मंच पर विराजित विद्वज्जन, मेरे सामने विराजित सभी मीडिया के महान हस्तियां, मीडिया के शिक्षकगण और विद्यार्थीगण, आप सभी को मेरा अभिवादन. हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है भविष्य की पत्रकारिता और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया. तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले चाहूंगा कि हम जरा कल्पना करें कि हमने पोस्ट कार्ड और जो पोस्ट सेवाएं हैं उनका कितना बड़ा युग देखा है. उसके बाद में हमने जो युग देखा है वो देखा है टेलीफोन का, उसके बाद में हमने एक युग देखा है पेजर का, उसके बाद में हमने एक युग देखा है मोबाइल फोन का जिसने हमारे जीवन को बदल के रख दिया, उसके बाद 2G, 3G, 4G और 5G. कितने तेजी से हमारे जीवन में इनका आगमन हुआ है, इस बात पर विचार करना चाहिए. और विचार ये भी करना चाहिए कि आईफोन 11, आईफोन 12, 13, 14, 15, 16, 17, इसमें कितनी तेजी से आगमन हुआ है इनका. तो और AI का जमाना अब आ चुका है. तो ये जो तरक्की हुई है, तकनीकी तरक्की हमारी जो हुई है, उसमें तेजी बहुत ज्यादा है, उसमें गति बहुत अधिक है. इस गति को हमें रेखांकित करना पड़ेगा और इस गति के बारे में हमें विचार करना पड़ेगा. तो ये तय मानिए कि AI कोई अंतिम गति नहीं है. आने वाला जो भविष्य क्या होने वाला है उस पर भी चिंतन और मनन करने की जरूरत है. तो यदि हम भविष्य की पत्रकारिता की बात करें या AI और सोशल मीडिया की बात करें, तो पहलू दोनों है, दो तरफा पहलू है. एक तो है सकारात्मक, दूसरा है नकारात्मक. अभी डॉक्टर कुंजन आचार्य जी को हम सुन रहे थे, उन्होंने विस्तार से AI के बारे में चर्चा की. अभी एक बहन आई है, उन्होंने भी बात की. तो देखिए, AI ने दो काम किए हैं. एक तो ये कि आपके जीवन को आसान बनाया है, सुविधामय बनाया है. और जो भी तकनीक आती है वो ये दो काम करती है. कोई सी तकनीक आई हो, पंखा आया हो, माइक्रोफोन आया हो, कौन सी तकनीक की बात करेंगे जिसने आपके जीवन को सुविधामय नहीं बनाया हो, आपके जीवन में गति नहीं दी हो। गति भी दी है, जीवन को सुविधा में भी बनाया है, साथ ही साथ आपके जीवन को बहुत ज्यादा सुगम बना दिया। और एआई और सोशल मीडिया की बात करें तो इसने जो पत्रकार जमात यहां पर बैठी है उनके जीवन में तो क्रांति ला दी। ये जो पत्रकार जमात है इसमें कई लोग वो भी होंगे जो पहले डिक्शनरी देख के देखा करते थे कि इस वर्ड का या शब्द का मतलब क्या है, और उनकी अपनी एक ऊर्जा हुआ करती थी और जो लिखने की पद्धति थी, जो शैली थी उनकी, वो अनूठी थी। उनका ज्ञान विशद ज्ञान था और उनका ज्ञान गूढ़ ज्ञान था, लेकिन अब ज्ञान का स्तर धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि जब भी तकनीक आती है दो अवगुण देती है। पहला आपको शारीरिक अवगुण देगी, कुछ न कुछ आपके शरीर में कुछ न कुछ इस प्रकार की विकृति पैदा करेगी, और दूसरा आपको मानसिक रूप से पंगु करेगी, ये तय मान लीजिए। तो दोनों ही विकृतियां इस दौर में देखने को मिलेगी और आने वाले दौर में भी देखने को मिलेगी। पहले कुछ दिन पहले तक आप 10-10, 20-20 टेलीफोन नंबर याद कर लिया करते थे, अब आप में से बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको 4 फोन नंबर भी याद है? संभवतः मुझे नहीं लगता नहीं होंगे। तो एआई ने हमें क्या दिया? एआई ने सब कुछ दिया। यदि आप किसी का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो क्या प्रश्न करने हैं वो एआई बना के दे देगा। यदि आपके पास कोई इंटरव्यू करने वाला नहीं है, किसी के पास हिम्मत नहीं है, कोई संसाधन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो एआई इंटरव्यूअर की भूमिका में आ जाएगा, कोई इंटरव्यू भी कर देगा, प्रश्न कर देगा। यदि आपके पास कोई विषय विशेषज्ञ नहीं है कि किसका मैं इंटरव्यू करूं, तो वह भी इंटरव्यू ही जो आपका एआई टूल है वही आपको विषय विशेषज्ञ बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। और दूसरा सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने आपको ये काम दिया है कि हजारों लाखों लोग पत्रकार पैदा कर दिए। आचार्य साहब आप जो कह रहे थे ना कि भविष्य खतरे में है, मैं नहीं मानता भविष्य खतरे में। क्यों नहीं है? आप देखिए कि कितने लोग थे कि हम कितना समय पहले अखबार, सोशल मीडिया या न्यूज के लिए दिया करते थे, मतलब आपकी व्यूअरशिप कितनी हुआ करती थी। बमुश्किल से लोग 1 घंटा पढ़ते थे अखबार को, जब अखबार था। उसके बाद में टीवी आई, तो टीवी ने क्या किया कि टीवी ने आपको ये किया कि अखबार पढ़ने के साथ साथ 2 से 3 घंटे लोग बाग स्पेंड करने लगे। आज आप सब अपना मोबाइल उठा के देखिए और उसके अंदर स्क्रीन टाइम आता है, 6 से 8 घंटे का हर व्यक्ति का स्क्रीन टाइम है। तो आपके यूजर्स बढ़ गए, आपके उपभोक्ता बढ़ गए, जो लोग देखने वाले हैं कंटेंट को वो बढ़ गए। तो हजारों और लाखों पत्रकार पैदा हो गए और आने वाले समय में करोड़ों तक संख्या जाएगी। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपकी शारीरिक विकृतियां और मानसिक विकृतियां दोनों ही आएंगी। और नैतिकता का, और आपने आदर्श पत्रकारिता की बात की, तो आदर्श और नैतिकता दो शब्द बड़े गूढ़ हैं। गांधी जी ने कहा था कि नैतिकता ही मानव जीवन की असली शक्ति है। लेकिन नैतिकता क्या मशीनों में होगी क्या? नैतिकता तो इंसान के अंदर होती है, और आदर्श भी इंसान के अंदर ही होते हैं, आदर्श किसी मशीन के अंदर नहीं हो सकते। तो भविष्य की पत्रकारिता के बारे में आप एक तय मान लीजिए कि बहुत ज्यादा कंटेंट आने वाला है, बहुत सारे पत्रकार आएंगे। कोई बात कर रहा है, पहले सीमित हमको ज्ञान मिलता था, आपको यदि आज किस विधि पाक कला किस प्रकार की जाती है उसके बारे में मिल जाएगा, किस जगह पर कौन सा डेस्टिनेशन है। हजारों लोग यूट्यूबर्स बन चुके हैं जो किसी पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा कोई विषय नहीं जिसके बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब डॉक्टरी का जो पैसा है उसके बारे में भी लोग बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे विषयों को खोज के लेके आ रहे हैं जिनके बारे में हम कभी एक एक कॉलम पढ़ा करते थे, सीमित स्थान हुआ करता था, लेकिन अब स्थान बढ़ गया है, सीमित स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ये चुनौती है कि ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, वो अनियंत्रित मीडिया है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। और अनियंत्रित है, इसी का ये दुष्परिणाम है कि राजस्थान के अंदर, अकेले राजस्थान के अंदर पिछले 5 वर्षों के अंदर कई बार इंटरनेट सेवाओं को रोकना पड़ा, क्योंकि अनियंत्रित, आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। दंगे भड़क जाते हैं, समुदायों के बीच में झगड़े हो जाते हैं, कहीं पर भी कोई भी अराजकता पैदा हो जाती है, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा खतरा हो गया है हमारे समाज के सामने कि हम अनियंत्रित मीडिया के दौर में गुजर रहे हैं, जिसने क्या किया है, कई लोगों का जीवन छीन लिया है। हमने कोई भी चीज हमारे पास आती है, हम आंख बंद करके उसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये गलती मशीन की तो नहीं है, ये गलती तो आपकी और हमारी है, जो हमने इसको देखा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो चीज है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? एक स्टीफन हॉकिंस ने एक बात कही है, द राइज ऑफ पावरफुल एआई विल बी इधर द बेस्ट और द वर्स्ट थिंग एवर टू हैपन टू ह्यूमैनिटी, वी डू नॉट येट नो विच। शक्तिशाली एआई का उदय मानवता के लिए अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि भी हो सकती है और सबसे बड़ा संकट भी, हमें अभी तक पता नहीं कि यह कौन सा रूप लेगा। तो संकट यही है कि हमें देखना पड़ेगा कि किस करवट बदलेगा। तो एक और बात, आदर्श की बात कही, तो आदर्श क्या है? आदर्श पत्रकारिता की बात करें तो आदर्श को समझना पड़ेगा और नैतिकता को समझना पड़ेगा। ये वो मूल्य है, मानव मूल्य, जो हमारे लिए आचार संहिता है। हमारे माता पिता हमको बताते हैं कि दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग, यह ठीक है और यह गलत है। यदि किसी का पैसा आपको मिल गया रास्ते में, तो आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पता है इस व्यक्ति का पैसा है कि मैं लौटाऊं, लेकिन आपका कॉन्शियस और आपकी जो परवरिश है वो बताती कि मुझे इसका पैसा लौटाना चाहिए। ये नैतिकता है। और आदर्श क्या है? आदर्श भगवान राम ने स्थापित किए, महात्मा गांधी जी ने स्थापित किए कि माता पिता ने जो कहा मैं उनका अनुसरण करूंगा। ये भगवान राम के आदर्श थे कि जो हमारे उन्होंने कहा है, पिताजी ने जो कहा है, आज आप माने ना माने ये आपकी मर्जी है। तो आदर्श जो है, और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि आपका भविष्य आपके आदर्शों पर निर्भर करता है। तो कुल मिलाकर मैं दो बातों को रेखांकित करना चाहूंगा यहां पर। एक तो ये कि तकनीक तो आएगी और जाएगी, तकनीक बदलती रहेगी, आने वाले समय में भी तकनीक और ज्यादा एडवांस होगी, और ये तय मानिए कि कहीं ना कहीं इतना अधिक कंटेंट हो जाएगा कि हमको विचार करना पड़ेगा कि हमको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। लेकिन उन देशों में संकट नहीं है जहां के नागरिक वो सजग और सुशिक्षित है, उनके हाथ में जो टूल है तो उसको उपयोग करना जानते हैं। जापान में तो नहीं होते कि आए दिन आपको इंटरनेट सस्पेंड करना पड़े। तो ये हमारे देश में इसलिए होता है कि हम लोगों के पास, हम लोग सेंसिबल नहीं है, दूसरा हमको ये विवेक नहीं है, हम लोग शिक्षित नहीं है इस बात को लेकर कि जो टेक्नोलॉजी है इसका किस प्रकार से उपयोग करें। और एक बात है, साइंस कैन मेक अस पावरफुल बट ओनली एथिक्स कैन मेक अस ह्यूमन। सो हमें एथिक्स पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और श्रीमद् भागवत में कहा गया कि सत्यम वद और धर्मम चर, तो हम सत्य बोलें और धर्म के अनुसार आचरण करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
थैंक यू भ्राता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जीवन की सच्चाई से आपने हमें अवगत कराया कि जीवन में सफलता पानी है सुख शांति के साथ, तो हमें सत्य की राह पर चलना है। जीवन में ऐसे लोगों को अपना आदर्श बनाना है जो हमें जीवन के ऊंचाइयों पर ले जाए। इन्हीं बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगी भ्राता ओमवीर सिंह जी, जो कि ग्वालियर से पधारे हैं। आप IMT यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है भ्राता ओमवीर सिंह जी। पुनः सबसे निवेदन है सभी वक्ताओं से, कृपया समय पर अपना वक्तव्य पूरा करें।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सम्मानित मंच, अति सम्मानित सदन, अभी बात चल रही थी, मुझसे पूर्व बहुत ही गूढ़ प्रवक्ताओं ने AI के बारे में बहुत सारी बातें हैं कहीं, मैं उसमें क्योंकि समय की भी बाध्यता है, कुछ छोटी मोटी चीजें जो आमतौर पे हम AI के इस दौर में भुगतते हैं और ये सोचते हैं कि हमने अपना पूरा दायित्व एक मोबाइल पे या एक मशीन के ऊपर छोड़ दिया है और हमारा दायित्व पूरा हो गया है, वो जो हमें बताएगा उसी के मार्गदर्शन पर हम चलेंगे, वो जो कहेगा हम वैसा ही कहेंगे, वो जो जैसे बात कही गई खाने पीने की आगे जो चीजें आने वाली हैं वो हमें कहेगा ये खाना है ये पीना है वैसा ही करेंगे। तो शायद संचार क्रांति के दौर हैं, आते रहे जाते रहे आते रहेंगे, लेकिन जब तक मेरा पूर्ण विश्वास है कि जब तक हम जिस परिसर में हैं उस परिसर में अगर इस विचारों का मंथन चलता रहेगा तो हमें कतई इन चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है कि हम कहां हम किस चीज से ठगे जाएंगे या कहां नहीं ठगे जाएंगे। समय की मांग है, सब चीजों का परिवर्तन होता है। एआई का इस्तेमाल पत्रकारिता में भी है, समाज की दूसरी चीजों में भी है, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में, रक्षा में भी है, सभी चीजों में है। लेकिन जिस चीज की चिंताएं यहां की गई, रोजगार की बात है, रचनात्मकता की बात है, सृजन की बात है, शायद हमने उसको मशीन को जो तैयार किया उसमें जितना हमने दिया वही वो आपको लौटा रही है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अगर हम नैतिकता की बात करते हैं, हमने मशीन को वो सिखाया होता वो हमें देती। हम बात करते हैं कि हमने कुछ सेकंडों में कोई न्यूज हम तैयार कर लेते हैं, वैसे विचार अगर हमने उस मशीन में भरे होते तो हो सकता है वो अच्छे विचार भी हमें देती। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर समय हर चीज की एक क्रांति का दौर आता है और आता रहेगा, लेकिन इन सब चीजों से घबराने की बजाय हमें अपने मानसिक संतुलन पर, हमें सकारात्मक सोच पर, हमें, मैं पहली बार इस परिसर में आया हूं, मेडिटेशन जो एक बहुत ही मजबूत चीज है और जो देखने को यहां मिला, एक दिन में मेरे खुद में जो अंतर मुझे समझ में आया उससे ऐसा लगा कि शायद यहां आने में बहुत देर हो गई, और अब जब आए तब सवेरा हुआ, तब जागे, तभी एक नई शुरुआत होती है। मुझसे बहुत बुद्धिजीवी जिन्होंने यहां अपने वक्तव्य रखे, मैं उनकी सभी बातों से सहमत हूं, और सभी से मेरा निवेदन एक ही है कि हम स्मार्ट घड़ी पहनते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, उसको आप देख सकते हैं कभी भी। मेरे कई सारे मित्र मुझसे कहते हैं कि आज मैं 10,000 कदम चला, 12,000 कदम चला, 15,000 कदम चला। मैं आप सबको इस बात से अवगत कराना चाहता हूं कि वो भी झूठ बोलती है। अगर नहीं है तो आप इस सत्र के बाद अपने अपने मोबाइल में जितने कदम चले हैं या स्मार्ट वॉच में जितने कदम आपने देखे हैं, एक बार एक ही जगह पे खड़े होकर आप अपनी उस वॉच को या उस मोबाइल को ऐसे ऐसे करके देखिएगा, जितनी बार आप ऐसे करेंगे वो उतने कदम बढ़ा देगी। ये सजगता की बात है। चाहे जैसी क्रांति आए, चाहे जैसा दौर आए, अगर आप उसके साथ सजग नहीं है तो आपके साथ हमेशा, जैसे ठगी की बात कही गई, मार्गदर्शन की बात कही, ये होता ही रहेगा। हम जिस देश के वासी हैं वहां की आज भी 60-70% आबादी गांव में रहती है, उसको जो हम परोस रहे हैं, जो हम अपने मोबाइल से उसको भेज रहे हैं, वो उसको उतनी तेजी से बढ़ा रही है। तो ये सब जितने बुद्धिजीवी मंच पे हैं, जो सामने हैं, मैं उद्घाटन सत्र में यहां मौजूद था, करीब 1,500 पत्रकार यहां मौजूद थे, ये सबका दायित्व बनता है कि हम जैसा मशीन को देंगे, जैसा मशीन से लेंगे, जैसा समाज को परोसेंगे, वो सब आपको वापस मिलने वाला है। मैं एक मिनट और लूंगा, वक्त की कमी है। मैं आबू परिसर, माउंट आबू परिसर में गया, वहां एक सॉफ्टवेयर मैंने देखा जो ये बताता है कि आप एक 2 मिनट का वो एक टेस्ट था कि आप अभी क्या सोच रहे हैं। पता नहीं कितने लोगों ने जो यहां से जुड़े रहे हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने अपने पहली बार अपनी लाइफ में देखा। उन्होंने बताया कि आप अभी जहां हैं, जो सोच रहे हैं वो भी आप मशीन की तरह ही सोच रहे हैं, तो आपके वो ग्रीन, रेड, येलो जो भी सिग्नल आए उनसे आप 1 मिनट 2 मिनट जब अपने विचारों को स्थिर नहीं रख सकते तो हम मशीन को दोष क्यों देते हैं, वो मशीन हमने बनाई है। तो मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो यहां एक विषय लिखा हुआ है, शांति जिसके सब प्रतीक हैं, एकता जो बाईं तरफ दिखती है, और समाज जो आप बैठा है, जैसा आप कहेंगे जैसा आप करेंगे वही समाज को मिलने वाला है। ओम शांत।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। आपने एक बात कही कि एक मशीन में टेस्ट होता है, मैं आपको उस बात से अवगत कराना चाहूंगी, वो भी एक एआई का ही हिस्सा है। ब्रह्मा कुमार इसका एक स्पार्क विंग है, जैसे मीडिया विंग है, इस तरह से एक स्पार्क विंग है जहां पर मेडिटेशन के माध्यम से तरह तरह की न्यू इन्वेंशन होती रहती है, एक तरह से रिसर्च होती रहती है। तो एक मशीनरी बनाई गई है जो आपके ब्रेन्स में कुछ कुछ वो लगाया जाता है और आपको आंखें बंद करके दो मिनट के लिए बिठाया जाता है, उसमें आपका टेस्ट होता है ब्रेन का कि आपका ब्रेन कितना परसेंट एक्टिव है, कितना परसेंट स्टेबल है, किस क्वालिटी के थॉट्स क्रिएट करता है। और मैं समझती हूँ कि यूएसए ने ऐसा एक कैमरा भी लॉन्च किया है अभी, जो फोटो क्लिक करते ही पता चल जाता है कि आपका ऑरा कैसा है। ये भी एक एआई का ही हिस्सा है। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स ज्यादा क्रिएट करता है तो कहते हैं उस फोटो के पीछे बैकग्राउंड में ब्लैक कलर का ऑरा दिखता है, तो उससे प्रूफ होता है कि ये व्यक्ति या ये पर्सन है जो कंटिन्यू क्या सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। और जो व्यक्ति पॉजिटिव सोचता है या बहुत अच्छी शुभ भावनाएं रखता है तो कहते हैं उसके पीछे, उसके बिल्कुल सर के पीछे एक व्हाइट कलर का, माना एकदम गोल्डन व्हाइट कलर का ऑरा दिखता है। सोचिए भाइयों बहनों, अगर वही कैमरा, परमात्मा ने उसी कैमरा से आपका अगर फोटो क्लिक किया तो आपके पीछे कौन सा ऑरा आएगा? कितने यहां बैठे हैं जो कहेंगे हमारे पीछे व्हाइट ऑरा आएगा, वो हाथ खड़ा करें। आना चाहिए, नहीं डाउटफुल नहीं, श्योर जो है वो हाथ खड़ा करें एक बार। और कितने ऐसे हैं जो कहें कि नेगेटिव है, हम सोचते ब्लैक ऑरा आएगा? ईमानदारी से हाथ खड़ा करिए, एक का ही खड़ा हुआ है, भाई साहब के लिए तालियां बजाएं। ईमानदारी ये भी हमारे जीवन की एक वैल्यू है, नैतिकता है, जो आज के समय में बहुत कम हम देखने को मिलती है। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः निवेदन करूंगी भ्राता मनोहर मनोज जी को। आप गाजियाबाद से पधारे हैं, आप एक लेखक भी हैं, साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, भ्राता मनोहर मनोज जी।
ओम शांति। मंच पर विराजमान सारे डिग्नेटरीज, इस ब्रह्म कुमारी की सारी टॉप दीदियां जिनके प्रवचन और उपदेशों से जीवन की एक दृष्टि मिली पिछले दो दिनों में, सारे वैल्यूएबल श्रोतागण जो अभी अंदर हैं और जो बाहर भी हैं, मित्रों, जो ये मीडिया का जो मसला और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सबसे पहले तो मैं पूरी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाने वाले इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि आपने धर्म बनाम अध्यात्म में पूरी दुनिया को अध्यात्म की एक नई दृष्टि दी है। जहां धर्म में राजनीति उसका एक हेड काउंट कराता है, लेकिन उसी धर्म का जो सांस्कृतिक स्वरूप है वो बड़ा आनंदित करता है, लेकिन अध्यात्म के जरिए जो मन की शांति, समाज की शांति, देश की शांति और पूरे दुनिया को शांति, सत्य का रेवल्यूशन यानी सत्य का अन्वेषण, और जो अलग अलग तरीके के जो वैल्यू, जो वैल्यू सेंस है, यानी कि कहीं न कहीं मीडिया भी उन्हीं चीजों की परख करता है। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी जरूरत है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मीडिया तो दूसरे की ट्रांसपेरेंसी चेक करता है, वो कोई गवर्नमेंट महकमा नहीं है जो अपनी सारी चीजों को, फंड को और सारी योजनाओं को दिखाएगा। कल भी मीडिया को लेकर के, मीडिया की भूमिका को लेकर के बात हुई, और आज का टॉपिक एआई है, क्योंकि तकनीक की परीक्षा मीडिया को हर 5 साल पर देनी पड़ती है। आज एआई है, पहले असंख्य नए तकनीकों की चुनौती आई, तो इसको तो मैं बाद में समअप करूंगा, लेकिन पूरे मीडिया का एक मैं ब्रीफ में एक पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगा कि आखिर जो मीडिया को लेकर के कहा जाता है कि मीडिया अपनी भूमिका से अलग हो गया, मीडिया जो है अपनी भूमिका निभा नहीं रहा है, अपने पद से विचलित हो गया। और मैं बताना चाहूंगा कि चलिए, आप राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का एक बड़ा वाइडर ऑब्जेक्टिव है ब्रह्म कुमारी का, लेकिन आम तौर पे जितने मीडिया पे संगोष्ठियां होती हैं उसमें ज्यादा मीडिया के प्रवचन देने वाले मीडिया की भूमिका टॉपिक का चुनाव किया जाता है। मेरा कहना है कि मीडिया जो अपने रास्ते से विलग हुआ है, जैसे कि कल एक वक्ता ने कहा है कि समाज में हर जगह डिजनरेशन का दौर है, तो मीडिया भी उससे प्रभावित हो रहा है, वो बात ठीक है, लेकिन मीडिया को एक और गुरुतर भूमिका निभाना है, ज्यादा अपनी आत्म आलोचना लेना है और सच्ची आलोचना पूरे सिस्टम और समाज का करना है। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूंगा कि मीडिया से इस बात की अपेक्षा होती है कि हर तरीके के चार और कार यानी कि दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, अनाचार, तिरस्कार, ये जितने तरीके के चार हैं उसके खिलाफ खड़ा रहना। और दूसरा कि मीडिया हर तरीके से गैर बराबरी के खिलाफ, पक्षपात के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि वही सेंस ऑफ वैल्यू उनमें ज्यादा होता है, उनमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए वो करते हैं। लेकिन अब थोड़े से विगत इतिहास पर नजर डालें तो 1950 में जैसे ये कहा जाता है कि आजादी के आंदोलन में भूमिका थी, मैं इससे भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर आंदोलनकारी पत्रकार था और हर पत्रकार आंदोलनकारी भी था, तो इसलिए उसको एक पार्ट एंड पार्सल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन जो मूल्यों का पतन हुआ कि हमारे राजनेता जेम ऑफ सोसाइटी थे 1950 में, लेकिन 60 के दशक आते आते जब सत्ता का स्वाद मिला तो उनमें डिजेनरेशन हुआ। 70s आते आते देश की नौकरशाही में डिजेनरेशन आ गया, 80s में टीचर्स कम्युनिटी में डिजेनरेशन आ गया, चूंकि उनके पगार बड़े सुरक्षित हो गए, आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उनको हैंडसम सैलरी मिलती है, भारत में एक भारत गरीब मुल्क है। 90s में और 2000 में कहीं ना कहीं मीडिया, जो कि लंबे समय तक त्याग, बलिदान और सादगी के लिए जानी गई और समाज के प्रति कमिटमेंट के लिए जानी गई, उसमें भी बदलाव आया। लेकिन मैं इसके लिए कुछ चीज ये कहना चाहूंगा कि आज जो मीडिया में जो अलग अलग तरीके की बीमारियां, जैसे ब्लैकमेलिंग, जैसे कि कंकोक्टेड न्यूज, या जैसे कि किसी भी तरीके का तिल का ताड़ बनाना, बियॉन्ड प्रोपोर्शन किसी चीज को हाईलाइट करना, मान लीजिए कि अगर कोई बहुत बड़ा जुर्म या अन्याय हुआ है तो उसको उस खबर के वैल्यू के मुताबिक आप कवरेज दें, लेकिन अगर कोई छोटी चीज है तो उसको ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, तो कहीं ना कहीं जो मीडिया को, अगर जैसे आम तौर पे मैं तमाम मीडिया गोष्ठियों में जाता हूं तो लोग कहते हैं कि हमारे इंडियन एक्सप्रेस में, तो हमारे आज तक में, तो हमारे ललन टॉप डॉट में, तो हमारे स्थानीय न्यूज पेपर में, मुझे लगता है कि आप अपने को न्यूज पेपर तक जोड़कर अपने को संकुचित और संकीर्ण मत बनाइए, आप लोकतंत्र का चौथा खंभा अपने को बताइए। चूंकि कहीं न कहीं मीडिया आजादी के बाद पूरी दुनिया में जब लोकतंत्रों का विस्तार हुआ तो मीडिया को लोकतंत्र की एक बुनियादी शर्त मानी गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस। लेकिन फ्रीडम ऑफ प्रेस अपने आप में इनकम्प्लीट ऑब्जेक्टिव है, यह मीडिया की पूरी पर्सपेक्टिव नहीं देता, केवल मीडिया को पूंजी लगाने वाले लोगों को स्वतंत्रता प्रदान कर देता है। इसमें मीडिया का जो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रॉड स्वरूप आना चाहिए था, जिसमें कि डेमोक्रेसी में अलग अलग अंग, चार अंग जैसे होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, जो कि अनऑफिशियल है, कहीं से किसी संविधान विधान में नहीं लिखा हुआ है, आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबके लिए है, मीडिया के लिए भी है। तो चूंकि संविधान में उसका उल्लेख नहीं हुआ तो चार अंग जो एक दूसरे को डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस करते हैं, जिससे कि सिस्टम बढ़िया चलता है, बल्कि समाज को भी वो दिशा देने का काम करते हैं, समाज के प्रति भी दायित्व निभाते हैं, वो संविधान में उल्लेख नहीं होने की वजह से वो हमारी जो परंपरा थी, जैसे लोग कह रहे हैं कि मीडिया भटक गया है, तो हमारी परंपरा बड़ी रिच थी, बड़ी मजबूत थी, कि उसमें पत्रकार त्यागी होते थे, समर्पित होते थे, देशभक्त होते थे और समाज के प्रति संवेदना को लेकर के चलते थे। अब दोस्तों, जैसे कि आज AI की टॉपिक है, तो मैं बता दूं कि मीडिया को कब नहीं टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब न्यूज पेपर होता था तो मैगजीन का कॉन्सेप्ट आया, फिर मैगजीन पर न्यूज पेपर ने भी मैगजीन का रूप ले लिया तो न्यूज पेपर मैगजीन की तरह निकलने लगे, फिर टेलीविजन मीडिया का आया चुनौती, तो अखबारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी, जब 90 के दशक में तमाम मीडिया के आलेख आया करते थे, और जब टेलीविजन बढ़ा तो उसमें रेडियो क्रश हो गया, और टेलीविजन जो बढ़ा और जब टेलीविजन का एक नया दौर आया कि सनसनी खबरों का एक नया कलेवर आ गया, एक अलग तरीके का हल्ला बोल, या जो कहने की जरूरत नहीं आप सब जानते हैं, और फिर टेलीविजन मीडिया जब बढ़ता है तो फिर डिजिटल मीडिया का आता है, और डिजिटल मीडिया के बाद आप सोशल मीडिया का आप सब देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ने मीडिया का लोकतांत्रिकरण किया और लोकतंत्र को ज्यादा से ज्यादा मीडिया के हैंड दिए। लेकिन मैं बात कर रहा हूं उन मीडिया कर्मियों की, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जिनके सबके पास मोबाइल के स्क्रीन है और सब सिटीजन जर्नलिस्ट बने हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो फुल फ्लेजेड, जो मीडिया को अपनी आजीविका का धंधा बनाया है या अपना एक मिशन बनाया है या अपना एक प्रोफेशन बनाया है, आज उनका जो पूरा जो स्वरूप है, स्टेटस है, उसको मुझे लगता है कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया सम्मेलनों में उसको टॉपिक बनाया जाना चाहिए।
आज हम मीडिया में भी तमाम मीडियाकर्मी अपने सुविधा के अनुसार विश्लेषण करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मीडिया में जो आजीविका का जो संकट है, जो असुरक्षा है, अभी मैंने आपके नोटबुक में भी मैंने अपने कमेंट में यही लिखा, इतने स्ट्रेस में मीडिया जीते हैं, प्रोफेशनल इनसिक्योरिटी है, जॉब इनसिक्योरिटी है, एक्सीडेंट की के लिए आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है, या तरह तरह का तनाव है। प्राइवेट सेक्टर में चूंकि मीडिया होते हैं तो हमेशा आप पर फायरिंग कर दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की मीडिया, आज वही प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े मीडिया नवीस हैं वो क्यों इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए वो प्रोफेसर बनना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का कोई इनपुट आउटपुट होता नहीं है। सरकार बेहिसाब पैसे लगाती है तो उसमें अरबों रुपए जब खर्च होता है तो कई लोगों को रोजगार मिल जाता है, वही देश का भला है। लेकिन मैं किसी एक पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सबकी बात कर रहा हूं कि मीडिया का ये कंप्लीट पर्सपेक्टिव ये आना चाहिए कि हम मीडिया के वो सारे सवालात जिसमें मीडिया का सम्मान, मीडिया की आजीविका, मीडिया का कंसर्न, मीडिया को लिखने की आजादी, लिखने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीजों पर जो है सरकार अनसुनी कर दे, कोई भी एरिया रेगुलेशन से बाहर नहीं रखा जा सकता। अब मैं आता हूं आपके एआई पर, क्योंकि टॉपिक वो है। तो सवाल है कि हम लोग इतनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, बस कंक्लूजन कर रहा हूं मैडम, आपके अंतिम में आ रहा हूं, एक दो लाइन। हम लोग जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं एआई को लेकर, तो भैया ये तो सरकारों का काम है। हम लोग ये मोबाइल पर जो तमाशा देखते हैं ये तो रेगुलेशन का काम है। जब कंप्यूटर आया तो सबने कहा संकट आ गया, 1980 में कंप्यूटर इटसेल्फ बिकम ए बिग सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एआई का आप सदुपयोग करिए, उसको रेगुलेशन करिए, उसको लाइसेंस में लाइए और उसका बड़े ही सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करिए। ये ऐसी चिंता की बात नहीं है कि मीडिया के लिए अब तक कोई चिंता ही नहीं रही, अब एआई एकमात्र चिंता बनकर गया है। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मीडिया के सामने बहुत बड़े सवाल हैं। मीडिया नीति, मीडिया आयोग और संविधान में मीडिया का दर्जा, जिसे लेकर के मैंने काफी काम भी किया है, मैंने करीब हजारों लोगों के सिग्नेचर और सहमति ली है। तो मैं ये चाहूंगा कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से मीडिया के सवाल पर जो करीब 30 सालों से विचार मंथन करा रहे हैं, संविधान में दर्जा, मीडिया नीति और मीडिया आयोग, मीडिया के सारे सवालों, सारे समस्याओं और सारे मुद्दों का समाधान है। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। ओम शांति।
धन्यवाद भ्राता जी। मैं आमंत्रित करूंगी आगे भ्राता जयपाल पाटिल जी को, जो आप रायगढ़ महाराष्ट्र से पधारे हैं। आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भारतीय पत्रकार संघ से हैं और आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। भ्राता जयपाल पाटिल जी,
ओम शांति। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं सलाम करके इस सत्र के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय और सभी मान्यवर इनको प्रणाम करके आप सभी भाइयों पत्रकार बहनों से सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और नमस्कार। मित्र जी, मैं पहली बार प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से 20 साल से जुड़ा हूं। हमारे यहां की भारतीय दीदी है, वहां मैं सेवा देता हूं। वो बोले एक बार आप हमारा जो मीडिया कॉन्फ्रेंस में है वहां जाइए, और मैं पहली बार आया। आपके सभी ज्ञानी अनुभवी लोग हैं, आप यहां दो दिन से आए हैं, यहां का स्पेशल सोलर इक्विपमेंट आपने किसी ने देखा है, हाथ ऊपर करो। सोलर, आपको मैं बधाई देता हूं कि मैं किसान हूं। मैं जिस दिन आया अपने घर में बीबी माताजी रहते हैं, तो मानो बेडरूम में अगर दिया जलता है तो माताजी बोलते अरे बंद करो बंद करो, बिल आता है। और यहां काफी लाइट, तो मुझे पहला सवाल पड़ा कि ये बिजली कैसा चालू रहता है, तो वो बोले अरे भाई इधर सोलर है, आप कल देख के आओ। दोस्तों, मैं सोलर देखा, 40,000 करीबन अपना प्रजापिता ब्रह्म कुमारी राजस्थान गवर्नमेंट से मिलता है, और ये सुविधा यहां जाने के बाद मेरा अनुभव बहुत बढ़िया लगा। लोग मुझे पूछते हैं कि आप मीडिया सम्मेलन में क्यों जाते हैं, तो ये जो महानुभाव बैठे हैं ना, ये पूरे हिंदुस्तान में जो जो लोग यहां आते हैं पत्रकार क्षेत्रों में, उनका अनुभव, ये मेरे डॉक्टर साहब बैठे पत्रकार भाई ये हमारे फोटोग्राफर है, हम संपादक है, कितने भी लिखेंगे तो ये अगर फोटो नहीं देंगे तो हमारा अखबार नहीं चलता है। फोटोग्राफर इंपॉर्टेंट है। तो मेरा यहां मेरा जो अनुभव था वो ये पत्रकार भाइयों को रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, और ये सम्मेलन बहुत बढ़िया करते हैं वो हमारे जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ शांतनु भाई के लिए और उनके टीम के लिए जरा जोरदार ताली बजाओ। आप यहां देखा होगा स्टूडियो है, काफी 40-50 करोड़ रुपए खर्चे का स्टूडियो है। मुझे, मैं सीनियर होने के नाते, उन्होंने बोला अरे आप दिल की बात में जरा बता दो भाई, क्या कैसा है चल रहा है, आप यकीन नहीं करोगे, दिल की बात आप देखना। उसमें मैंने बताया कि पूरा हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लोग है, ये हमारे बाबा की जो सोच है, ये देश को प्रगति लेने जाने वाले 10 साल की बात कर रहा हूं मैं, बाबा की सोच है कि सोलर प्रोजेक्ट बनाया, मैंने जाके देखा, और ये ऐसा अगर पूरा हिंदुस्तान में पॉलिटिकल लोग कोई भी करे तो अच्छा रहेगा। 10 साल के बाद आदरणीय पंत प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने मेरा वो जो क्लिप है वो देखा और अयोध्या में हमारे पूरे देशवासियों को सोलर योजना जाहिर किया है। वो सब ये मंच की कृपा है। आप लोग हमेशा आइए, आपके ज्ञान में बढ़ोतरी रहेगा और वो ज्ञान लेके आप दूसरों को दे दो। आप पत्रकार भाई है, संपादक कई लोग हैं, आप रूम में बैठते हो, ऑफिस में बैठते हो, और हमारे जैसे बुजुर्ग आते हैं आपको मिलने के लिए, अरे महाराष्ट्र से आए क्या आप, हमारे उम्र के जितने भी लोग यहां बैठे हैं वो चाय नहीं पीते, चक्कर नहीं खाते, डायबिटीज, फिर वो पूछते हैं क्या लोगे, जो कुछ ठंडा लेंगे। हमारे संपादक मोहित कुर्सी से सामने वाले छोकरे को बोला अरे सूरज आ जाओ भैया, जरा ठंडा लेके आओ, 7 अप ले, ये लो सर, आपको अनुभव होगा। वो बेटा क्या बोलता है, जरा गाड़ी दे दो आपका, वो गाड़ी देता है और चला जाता है। दोस्तों, आप कभी भी किसी लड़के को जिसके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है उसको गाड़ी कभी जिंदगी में देना नहीं। 3 साल की सजा होती है, 25,000 रुपया जुर्माना गवर्नमेंट ने लगा दिया है। संपादक भाइयों ध्यान में रखना, ये आपकी सुरक्षा है। आप सब लोग, कई लोग इसमें किसान होंगे, है ना, किसान लोग भाई है कि नहीं, बहनों बहनों किसान लोग है क्या आप? हमारे भारत सरकार ने देखो, हम लोग आए अभी भीख के आए, काफी बिजली चमचमा रही थी, आए ना आप लोग, तो ये बिजली के लिए अपना मोबाइल एंड्रॉइड है, आप आपदा की बात कर रहा हूं मैं, दामिनी ऐप है वो डाउनलोड करो, आप जहां भी हो सुरक्षित रहेंगे। ये दो चीज आप करो और हमेशा के लिए सुरक्षित रहो और हमेशा आप यहां पधारो, क्यों ज्ञान मिलता है, आपके भाई लोग को भी भेजो और ज्ञान लेते रहो। मुझे इस मंच के ऊपर बोलने की संधि दी है, इसके लिए मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ जिला का हूं। जब भी जो भी यहां बैठे हैं वो कभी भी मुंबई आके हमारे यहां जगह अगर पधारे तो आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू भाई साहब, आपके मन की भावनाओं को आपने हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं आध्यात्मिक यात्रा की ओर। आजकल 3RRR का जमाना चल रहा है। RRR अर्थात रिलैक्स, रिफ्रेश एंड रिचार्ज। कब होंगे हम? हर किसी की अपनी अपनी हॉबी होती है। किसी को गाना सुनना अच्छा लगता है, किसी को भोजन करना अच्छा लगता है। जब तनावपूर्ण परिस्थिति से हम बाहर निकलना चाहते हैं तो हम अपनी अपनी पसंद की हॉबीज को यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने के बाद भी क्या हम रिफ्रेश, रिलैक्स और रिचार्ज होते हैं? चाहे भक्ति करो, भावना करो, पूजा करो, पाठ करो, भजन करो, व्रत करो या कुछ और, कितना टाइम होंगे, टेम्पररी, लेकिन आध्यात्मिक जगत की यात्रा हमें RRR के साथ जीना सिखाती है, रिलैक्स भी करती है, रिफ्रेश भी करती है और रिचार्ज भी करती है। आज का जमाना आ गया है डिटॉक्सिफिकेशन का। सभी ने अपने अपने जीवन में एक लाइफस्टाइल अपना रखी है कि महीने के 5 दिन 7 दिन हम व्रत करते हैं, बॉडी डिटॉक्स करते हैं। शरीर को तो हम डिटॉक्स करना जान गए हैं, लेकिन अपने मन को डिटॉक्स करना हम जानते हैं क्या? मेडिटेशन यही रास्ता है मन को डिटॉक्स करने का। जब मन बुद्धि डिटॉक्स होगी तो आत्मा रिलैक्स भी होगी, रिफ्रेश भी होगी और रिचार्ज भी होगी। जैसे हम कोई नृत्य देखते हैं, डांस देखते हैं, तो हमें उनके स्टेप्स कितने अच्छे लगते हैं, कितना स्टेप्स बाय स्टेप्स वो डांस करते हैं। अगर कोई ऐसे ही खड़ा रहे और हाथ पैर हिलाए तो हमें डांस अच्छा लगेगा? लगेगा, यस और नो? नहीं लगेगा। हमें तो डांस तभी अच्छा लगेगा, थोड़ा वो मैच करेगा एक स्टेप्स को दूसरे स्टेप के साथ। मेडिटेशन हमें जीवन में अपने कर्मों के साथ मैच करना सिखाता है, और जब हम अपने कर्मों के साथ मेडिटेशन को मैच करके चलते हैं, आध्यात्मिकता को मैच करके चलते हैं, तो हमारा जीवन वाकई सही मायने में सुखी और आनंदित होता है। तो आइए इस अंतर जगत की यात्रा का हम अनुभव करते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने फोन को साइड में रखेंगे, साइलेंट मोड पर डालेंगे 3 मिनट के लिए, और सच्चे दिल से आध्यात्मिक की यात्रा की ओर हम बढ़ेंगे। उस परम शक्ति परमात्मा को हम जरा जाकर मिल के आएंगे, क्योंकि कहते हैं जिसके संग में आप बैठते हो वैसा रंग आपके ऊपर लगता है। तो परमात्मा का संग इस संसार का सबसे श्रेष्ठ संग है। तो आइए हम परमात्मा के संग का अनुभव करते हैं और अपने आप को रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिफ्रेश करते हैं। इस मेडिटेशन की अनुभूति कराने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी आदरणीय सुनीता दीदी जी को, जो कि दिल्ली मंडावली सेंटर में 30 दशक से भी ज्यादा समर्पित रूप से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रही है। आप जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग की है आदरणीय सुनीता दीदी जी।
ओम शांति। हम ज्यादा समय ना लेकर के थोड़ी देर के लिए आध्यात्मिक अनुभूति में चलेंगे। वैसे तो सवेरे और शाम को परमात्मा को याद किया जाता है, अभी वो समय है, नुमा शाम का समय। हम सभी परमात्मा के सानिध्य में 2-3 मिनट के लिए चलें। चलिए आप सब आराम से रिलैक्स होके बैठिए। वैसे तो शाम को कहीं देखते तो नमस्ते करते हैं या परमात्मा को याद करते हैं, तो अभी हम परमात्मा की ओर चलते हैं। तो हमारे सम्मान्य मंच और सभा में सभी हमारे मीडिया कर्मी, जो भी भाई बहने हैं, हम थोड़ी देर के लिए परमात्मा की ओर चलते हैं। बहुत समय से हम चर्चा कर रहे थे, इस समय हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र कर लेते हैं। मैं आत्मा, इस शरीर को चलाने वाली इस मंदिर के अंदर सुंदर मूर्ति, एक पावरफुल ज्योति स्वरूप, निराकार लाइट पॉइंट, भ्रिकुटि के बीच उपस्थित हूं। पूरे शरीर को समेट कर मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा निराकार अखंड ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा ईश्वर गॉड अल्लाह खुदा उनकी याद में उनके सानिध्य में सुख का अनुभूति कर रहे हैं। मेरे पिता परमात्मा इस सूर्य चांद भौतिक दुनिया से ऊपर एक सुंदर अखंड ज्योति सूर्य चांद से ऊपर निवास स्थान में निवास करते हैं। हमारा ओरिजिनल स्वरूप शांति प्रेम आनंद शक्ति स्वरूप है। पवित्र स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, इस कर्म क्षेत्र पर मैं आत्मा अनेक नाम रूप वाले भिन्न भिन्न शरीर से पाठ बजाते हूँ। अब मैं आत्मा अपने कर्म क्षेत्र इस शरीर में उपस्थित हो रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी का। सभी ने ट्रिपल आर का अनुभव किया, सभी रिलैक्स हुए, यस और नो, यस। सबके हाथ नहीं उठ रहे हैं, सभी रिलैक्स हुए, रिफ्रेश हुए, रिचार्ज हुए। तो हम आज संकल्प करते हैं प्रतिदिन, ज्यादा नहीं, सुबह उठते से ही, सुबह के 5 मिनट हम अपने आप को उस परम शक्ति से कनेक्ट करेंगे और अपने आप को रिलैक्स, रिचार्ज एंड रिफ्रेश करेंगे। करेंगे सभी संकल्प तो सभी हाथ खड़ा करें। मेडिटेशन की इतनी ताकत है। हमारे आदरणीय जानकी दादी जी जो कि 103 वर्ष के थे, यूनाइटेड किंगडम ने उन्हें इंडियाज़ नंबर 1 बेस्ट स्टेबल माइंड वुमन का अवार्ड दिया था। ये सिर्फ मेडिटेशन की ताकत है। जब दादी जी 104 साल में कर सकते हैं, अभी तो हम बहुत उनसे कम एज में है। कहते हैं स्पिरिचुअलिटी आफ्टर 60 लाइफ में आनी चाहिए, मेरा मानना नहीं है। जब जीवन में चैलेंजेस आते हैं तो परीक्षाओं की पढ़ाई पहले होती है ना। कभी देखा है कि पढ़ाई बाद में होगी और परीक्षा
पढ़ाई परीक्षा पहले होगी और पढ़ाई बाद में, ऐसा हुआ है? नहीं, पढ़ाई जब पहले पढ़ते हैं और उसी बिहाव पे हम परीक्षाएं देते हैं। तो ब्रह्मा कुमारी जीवन के अनेक अनेक परीक्षाओं को पास करने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। इसलिए आज के यूथ को भी मेरा बहुत नम्र निवेदन है कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाएं, ताकि जीवन में आने वाली अनेक अनेक परीक्षाओं से आप सफल रूप से पार कर सको। उन्हें विषय चल रहा था कृत्रिम बुद्धिमत्ता माना AI का और सोशल मीडिया का। तो आज के हमारे इस सत्र के चेयरपर्सन है डॉक्टर DJ पति जी, आपसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ आप आए और इस विषय में हमारा आपका विचार रखे हमारे समक्ष। आपको जनजातीय समुदायों, मीडिया प्रभाव और सामाजिक परिवर्तन पर बेरहामपुर विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट के काम के लिए स्वर्ण जयंती समारोह वर्ष प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्ट्रीय फिलोसॉफी से सम्मानित किया गया है, तथा PRSI लीडरशिप अवार्ड से भी आप सम्मानित हैं और साथ ही साथ मीडिया एजुकेटर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। वर्तमान समय में आप इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूशन नोएडा में डीन के पद पर कार्यरत है। भाई जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। अनुरोध है भाई साहब, आप अपने विचार हम सबके समक्ष रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर BK योगिनी जी, मंच पर आसीन सभी महानुभव और इस सभागार में उपस्थित परमात्मा की आशीर्वाद से सिंची हुई उन सारे पवित्र आत्माओं को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे जो पवित्र शब्द है ओम शांति, अभी हमारे सिस्टर ने आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बताई है, ओम शांति से हमारे दिन की शुरुआत हो और लास्ट में भी जब आप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिटायरिंग फॉर द डे, सोने से पहले भी उच्चारण करें, इसमें बहुत ताकत होती है, बहुत पावर होती है। आज की जो अभी सत्र है उसके बारे में अभी कंक्लूडिंग रिमार्क जिसको कहते हैं, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखूंगा। बहुत सारे बातें हुई और बहुत लंबा टाइम तक चला। नॉर्मली इस तरह की डिस्कोर्सेस टाइम फ्रेम के अंदर होनी चाहिए थी। फिर भी जो भी हमारे सारे महानुभव ने आप लोगों के साथ साझा किया है, उन सभीयों की ओपिनियन को सुना और देखा और आप लोगों के सामने कुछ पॉइंटर के हिसाब से कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं आप अपना बात रखना चाहता हूं। जो टॉपिक एथिकल AI सोशल मीडिया फॉर एन आइडियल फ्यूचर ऑफ जर्नलिज्म, भविष्य की आदर्श पत्रकारिता के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सोशल मीडिया, ये जो विषय चुना गया है, मैं ब्रह्मा कुमारी सभी मीडिया प्रभाग के संस्थान को धन्यवाद देता हूँ। ये टॉपिक इस साल का जितने भी सत्र हुए हैं बहुत अच्छे और मीनिंगफुल विषयों पर चर्चा हुई है और मुझे लगता है कि इन विषयों पर हम जितने आगे चल के बातचीत करेंगे तब जाके लोगों के अंदर ज्यादा जागरूकता होगा, क्योंकि मुझे लगता है जागरूकता फैलाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अवेयरनेस इज द सोल की टू सक्सेस। तो मुझे याद है जब मेरे UN के टाइम में हमने UN एड्स के लिए कैंपेन किया था, जानकारी ही बचाओ, बाकी तो आप लोग शायद सुने होंगे देखे होंगे, वो बड़ी पॉपुलर हुई थी। और मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे स्लोगन के जरिए हमें सोशल मीडिया और जो एथिकल एस्पेक्ट को लोगों को समझाने की जरूरत है। अभी हमारे आप इसी सत्र में हमारे बहन ने आपके सामने बहुत अच्छे बातें रखी, चाहे कि हम डे टू डे में जो मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, डिफरेंट AI के डिफरेंट टूल्स को जब हम सर्च करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोगों को बारीकी से हर चीज को सीखना जरूरी है। तो मेरा ये भी सजेशन है ब्रह्मा कुमारी को कि इस तरह की जब सत्र हो एटलीस्ट 40% यंग मास को भी आप इन्वॉल्व करिए, क्योंकि वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा बारीकी से आप लोगों को समझा सकते बहुत इजी वे में, ताकि ये एआई सुन के बड़ा एब्यूजिव चीजें हो गया है। पूरी बातों को सुनने के बाद मैंने कुछ पॉइंटर्स बनाया है जो आप लोगों के सामने रखता हूं, और ब्रह्मा कुमारी को भी मेरे विशेष अनुरोध है अभी इस सत्र के बाद जब वैलिडिक्ट्री सेशन होगी ये सुझाव को भी उसमें रखा जाए। तीन चीजें के ऊपर, 3T के ऊपर हमें हमेशा गौर करने की जरूरत है, बिकॉज इसके अलावा हमारे कोई भी काम आगे बढ़ नहीं पाएगा, हम चाहे या ना चाहे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द रियलिटी एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। वी हैव टू एक्सेप्ट इट विथ ए पॉजिटिव माइंड, देन इट विल हेल्प अस टू डू मोर इनोवेशंस इन लाइफ। सो पहला टी जो है, 3T अपनाने की जरूरत है। 1 इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस। ऑल ऑफ अस हैव टू प्रॉमिस दैट वी लर्न एवरी डे 3 न्यू थिंग्स अबाउट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्निक्स, क्योंकि सारे पत्रकार लोग ज्यादा हैं या इस प्रोफेशन में है। सेकेंड, मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी अलाइनिंग AI। सो टेक्नोलॉजी फेमिलियरिटी एंड एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट टी। सेकेंड टी, जर्नलिस्टिक ट्रूथ। अभी हमारे कुछ वक्ताओं ने भी बोला, जितने लोग यहां बैठे हैं सब जानते हैं गलत किया है और सही किया है। 1% मार्जिन ऑफ एरर में 99% केस में बोलना चाहता हूं, क्योंकि भगवान की दया से जो हमारी ब्रेन है वो भी AI से ज्यादा काम करता है। आपको सुनकर हैरानी होगी, अभी जो लेटेस्ट US के रिपोर्ट निकला है उसमें क्लियर कट लिखा है कि ह्यूमन ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आगे ग्रोथ हो ही नहीं सकती। इसलिए अभी आपको बताया गया कि एथिकल व्यू पॉइंट और एथिकल प्रोस्पेक्टिव भी उसके साथ अलाइन किया जा रहा है। सो टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के साथ जर्नलिस्टिक ट्रूथ, हमारे प्रोफेशन में जितने लोग जुड़े हैं या आने वाले टाइम में जितने बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं पत्रकार के तौर पर, चाहे वो डिजिटल हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे किसी भी मीडियम में हो, ट्रूथ और एथिकल माइंडसेट के ऊपर हमें भी, उसको ऊपर खाली सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ के हमें सोचना चाहिए, ये मैसेज मैं दूं या ये न्यूज को मैं अगर सर्कुलेट करूं इसकी क्या रिपरकेशंस हो सकता है, क्योंकि एवरी एक्शन विल हैव ए रिएक्शन। सेकेंड, थर्ड, पब्लिक ट्रस्ट को जीतनी चाहिए। तो जर्नलिस्टिक ट्रूथ के साथ पब्लिक ट्रस्ट को अगर हम जोड़ देंगे तब कभी हमारे मैसेज या हमारे वीडियोस या हमारे कोई भी समाचार के जरिए कभी गलत मैसेज पब्लिक में नहीं जाएगा। तो ये चीजें अभी हमारे सिस्टर आप लोगों को बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज कर, बड़ा मीनिंगफुल है। तो सिमिलरली आप भी जब दिन की शुरुआत करें, अपने प्रोफेशन का काम जब आप करें या पर्सनल लेवल पे भी कोई मैसेज करते हैं, आप बोलिए मैं किसी भी तरह गलत मैसेजिंग या कोई भी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं करूंगा, तो मुझे जरूरत भी पड़े तो। ये जो चीजें आज हम फेस कर रहे हैं, जो थ्रेट हम फेस कर रहे हैं, अभी आपके यहां आने से पहले अभी मैंने बहुत सनसनीखेज रिपोर्ट सुना कि 3 रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर को साइबर फ्रॉड ने लूट लिया है। एना आपको सुनकर हैरानी होगा, 1-2 रुपया नहीं, 14 करोड़ रुपया अभी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुई है। तो हम लोग बहुत सारे सलाहकार, मतलब मीडिया सलाहकार के तौर पर सरकार से लेके बहुत सारे संस्था को देते रहते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आपकी कुछ ओपिनियन जो मैं आप लोगों के सामने नहीं बोल सकता, लेकिन मांगा गया है। तो कहने का मतलब हुए कि जर्नलिस्टिक ट्रूथ या इस प्रोफेशन में जुड़े सारे लोग, मैं खाली जर्नलिस्ट नहीं, हमारे कैमरामैन भाई साहब हैं या जो वीडियोग्राफर है, जो पोस्ट प्रोडक्शन करते हैं, जो वॉइस ओवर करते हैं, सारे इन टोटालिटी पूरी मीडिया प्रोफेशन पब्लिक ट्रस्ट को एक्सेप्ट करें। सेकेंड टी। थर्ड, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी विथ ट्रांसपेरेंसी। अगर हम अकाउंटेबल हो जाए, अगर मैं बोलूं कि मेरे गाइडेंस में इतने बच्चे काल के लिए या भविष्य के लिए तैयार कर रहा हूं, अगर मैं अकाउंटेबल हूं तो मेरा बच्चा कभी गलत डायरेक्शन में जाएगा नहीं, ये मेरा मानना है। अगर कन्विक्शन हो, जैसे अभी सिस्टर बता रही थी कि आप प्लेज लीजिए, बहुत लोगों ने, मैं देख रहा था आप लोगों ने, ये बड़ा अच्छा, जब आप दिल से कोई चीज करते हैं वो आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। कोई आपको रिजिडली बोलता है तब आपका माइंड बोलता क्यों, या आप थोड़ा सुनते हैं फिर इधर से निकाल देते हैं। तो मुझे लगता है अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी को अगर हम जोड़ दें, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, मैं कभी नहीं मानता ये गलत चीज है, लेकिन इस्तेमाल के ऊपर डिपेंड करता है। एआई भी इनोवेशन है हमारे अच्छे के लिए, जो इन्फॉर्मेशन के लिए हम घंटों, ये हमारे सीनियर कलीग एकेडमिक्स में है, कुछ अभी स्टेज इसी सभा में मतलब मौजूद हैं, वो मानेंगे एक एक रिसर्च के लिए महीने लग जाता था, जो आज की डेट में टाइम बचा रहा है। तो आप हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखिए। तो मैं तो नेगेटिव नहीं मानता, मुझे लगता है कि व्यवहारिक तौर पर हम लोगों को पहला जागरूकता है और ये तीन टी को अपनाना है, साथ में होमवर्क करिए, रोज नए नए चीजें सीखिए। मैं तो अपने बेटी से बहुत कुछ सीखा है, मैं कभी उस ईगो से नहीं गया कि मैं इतना ज्ञानी हूं कि मैं अपने बच्चे से कैसे सीख सकता हूं। आज की डेट में मेरा तो सजेशन है, हर माँ बाप अपने बच्चों को पहला गुरु मान लो, उनसे बहुत टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट में आप बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। सो जितना हम सीखेंगे उतना जो खतरा है वो कम हो जाएगा। एथिकल चीज कोई बहुत बड़ा जो आजकल काफी हवा बना के रखा, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी व्यवहार को, अपनी कर्मों को जब हम सुधार करने जाएंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, सच मन से, अपने आप एथिकल प्रिंसिपल इंप्लीमेंट अपने आप होता जाएगा। जो चीज गलत है, हमारे परमात्मा ने सभी लोगों को दिया है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, ये आपको बता देगा गलत क्या है सही क्या है। सो और आखिरी में, समय नहीं है, अभी वैलिडिक्ट्री सेशन भी होना है, मैंने बहुत सारी चीजें तैयार करके लाया था, तीन चार अच्छे रिसर्च रिपोर्ट, दो दिन रात को मैं पढ़ रहा था तो बहुत अच्छे अच्छे चीजें लिखा गया है, जो आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ या साझा कर सकते हैं, या मेरी ब्रह्मा कुमारी को भी मेरा ये सजेशन है कि एक जर्नल के तौर पर, एक बुकलेट के तौर पर जितनी चर्चाएं हो रही है उसकी भी एक पब्लिकेशन हो, ताकि आपके लिए भी एक रिकॉर्ड की तरह रहे और कोई उसको आगे चल के रेफर कर सकते हैं। बहुत अच्छे वक्ताओं ने, अच्छे लोगों ने पूरे देश भर में आके आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोई भी मेहनत को कभी छोटे करके नहीं आंकनी चाहिए। ना तो हम यहाँ खाना पूर्ति करने के लिए आए हैं, तो दिव्य भोजन तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ में जो कर्म हो रहे उसकी भी रिपोजिटरी बनाने की जरूरत है, भले डिजिटल के तौर पर हो लेकिन ये रिकॉर्ड होनी चाहिए। ये आगे चल के बहुत बारीकी से जितने शोधकर्ताओं को उनको भी मदद करेगा, जो पॉलिसी डिसीजन आगे लेने जा रहे हैं वो भी उसको रेफर कर सकते हैं। ये इन बातों पे मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है ऑर्गेनाइजर को और आप सभी लोगों को जिन्होंने ये कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में बहुत योगदान दिया, और मंच पर मेरे सारे साथियों को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से और डिटेल हुए में अपने अपने बातें रखी, मैंने सबकी चीजें नोट करके देख रहा था, बहुत अच्छी बातें हुई है। हम सब लोग एक खाली प्रॉमिस में खत्म करने से, एक लाइन आप सभी लोगों के कह रहा हूं, ईच वन टीच वन। हमारे एक कलीग जो अभी स्टेज में मौजूद है, उन्होंने बहुत अच्छी, बॉम्बे से आई है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। जो भी चीजें हम जानते हैं, ईच वन टीच वन, ऐसे करके वॉक द टॉक को जो अगर आप स्प्रेड करेंगे, मेरे से लिखवा लीजिए, अगले साल जब ये सत्र कभी अगले सितंबर 2026 में होगा, आप कम से कम एक एक जने 100 लोगों को कम्युनिकेट जरूर कर दिए होंगे। ये टारगेट मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है, ईच वन टीच वन, तो मुझे लगता है बहुत बड़ी जागरूकता पैदा हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद भ्राता जी आपका। समय की सीमा हम बहुत क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए ऑडियंस इंटरेक्शन कैंसिल कर दिया गया है। हमारा वैलिडिक्ट्री सेक्शन अभी कुछ ही मिनटों में शुरू होगा, उसके पहले मैं आदरणीय सुनीता दीदी से निवेदन करती हूँ कि हमारे मंचासीन सभी वक्ताओं का ईश्वरीय सौगात प्रसाद और शॉल ओढ़ाकर उन्हें सम्मानित करें। आप जिनको भी कोई प्रश्न होगा आज के इस टॉपिक पे, वक्ताओं से आप पर्सनल टाइम लेकर बाद में मिल सकते हैं। कुछ ही क्षणों में हमारा समापन सत्र यहाँ शुरू होने वाला है। हमारे मंत्री जी भी आ चुके हैं समापन सत्र के लिए, सारे स्पीकर्स भी आ चुके हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप कोई भी हॉल छोड़कर बाहर न जाएं, और अभी तालियों से हमारे वक्ताओं का आप स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना पेशेंस से आप सबने इस टॉपिक को सुना, इस सेशन को सुना। भ्राता जी प्लीज, वो बाद में करेंगे हम, अभी टाइम नहीं है। जल्दी प्लीज, जल्दी प्लीज, सभी जल्दी उठ जाइएगा प्लीज। जब तक ये सौगात सत्र खत्म होता है, आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा छोटा मोटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने शरीर को रिलैक्स कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। कृपया कोई बाहर न जाए, जो भी करना है इसी हॉल के अंदर आप कर सकते हैं। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, एक मराठी किताब फर्स्ट रो सोफा से खो गई है, जिस किसी को भी मिले कृपया वापस करें। किताब का नाम है आधुनिक भारतातील प्रबोधन। डार्क ब्लू कलर का हैंड बॉन्ड हार्ड बॉन्ड बुक है, जिस किसी को भी मिला हो या जिस किसी के पास बाय चांस चला गया हो, कृपया वो वापस लाकर स्टेज के पीछे हमें दे देंगे।